तो कल कहाँ रुके थे हम? हाँ? परिक्रमा ना, आज अर्चना से शुरू होना है ना, तीसवा। परिक्रमा से परिक्रमा किया नहीं था, चर्चा नहीं हुआ था ना, नहीं किया था। स्थाने गति ही, यहां शायद हम रुके थे। विष्णु मंदिर या तीर्थ स्थानों की यात्रा। यहां से शुरू होना है, ठीक है। तो हरि भक्ति सुधोदय में क्या कहा है जरा पढ़िएगा।
जो व्यक्ति विष्णु के अर्चा मंदिर की परिक्रमा करता है वह इस जगत में बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है।
तो देखिए, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं इन आसान तरीकों का लाभ उठाएंगे। भगवान ने इस भवबंधन से मुक्त होने के लिए इतना सुलभ उपाय बताया है, ये भक्ति मार्ग। लेकिन इस सुलभ मार्ग को छोड़कर ये सोचकर कि ये निम्न श्रेणी के लोगों के लिए है, भावुक लोगों के लिए है, जो मायावादी गण हैं, वो बिना वजह फिजूल के ऐसे तपस्या करते हैं, अपने आप को कष्ट देते हैं, और ऐसा करने के बाद भी वो चरम सीमा, सिद्धि के चरम सीमा को प्राप्त नहीं कर पाते, बल्कि उनका पतन हो जाता है अंततः। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतंत्यदो अनादृत युष्मदंघयः। ये भी चर्चा हम कर चुके हैं। केवल भगवान के मंदिर या भगवान की श्री मूर्ति की परिक्रमा करने से हम भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो जो परिक्रमा हमारी चल रही है 84 लाख योनियों में इस भौतिक सृष्टि के भीतर, वो नष्ट हो जाएगी। ये परिक्रमा चल रही है ना, किस प्रकार से चल रही है परिक्रमा? सारे योनियों में जा रहे हैं ना, सारे योनियों में घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं सारे ब्रह्मांड में, कभी देवलोक में, कभी पृथ्वी लोक में, कभी नरक लोक में, कभी निम्न श्रेणी के लोकों में, कभी इस योनि में, कभी उस योनि में, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। वो परिक्रमा चल रही है, उससे सब कुछ खत्म हो जाएगा। भगवान के विग्रह का की परिक्रमा करने से ये परिक्रमा जो है खत्म हो जाएगा। फिर आगे विशेष करके चातुर्मास के समय, जिन 4 महीनों में साधुगण जो ज्यादातर एक स्थान में ही रहते हैं, उस स्थान को छोड़कर कहीं जाते नहीं हैं, भ्रमण नहीं करते हैं, तो उस स्थान में एक विधि विधि है स्कंद पुराण में जिसका वर्णन है, वो क्या है जरा पढ़िए। स्कंद पुराण में कहा गया है
कि यदि कोई इस अवधि में विष्णु मंदिर की कम से कम 4 बार परिक्रमा कर ले तो यह समझा जाता है कि उसने सारे ब्रह्मांड की यात्रा कर ली। ऐसी परिक्रमा से ऐसे समस्त पवित्र स्थानों का दर्शन हो गया समझो समझा जाता है जहाँ से होकर गंगा नदी बहती है, और चातुर्मास के विधानों का पालन करने के से भक्ति पद शीघ्र प्राप्त हो सकता है।
इसका मतलब है कि कभी भी किसी भी समय और विशेष करके चातुर्मास के समय भगवान के श्री विग्रह या उनके मंदिर की 4 बार परिक्रमा करने से हमें सारे पृथ्वी या सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करने के समान हो जाता है, का लाभ मिल जाता है। और जिस प्रकार से गंगा जी जहां बहती हैं वो सारे स्थान पवित्र हो जाते हैं, और गंगा जी कहां से बहती हैं, ब्रह्मांड के आवरण से होकर सारे ऊपरी लोकों में से होते हुए पृथ्वी लोक पर, पृथ्वी लोक से होकर फिर पाताल लोक में जाती हैं। तो गंगा जी ऐसे सारे ब्रह्मांड को पवित्र करती हैं। परंतु जो व्यक्ति केवल श्री विग्रह का की परिक्रमा चार बार करता है उसे इन सारे तीर्थ स्थानों में, सारे पवित्र स्थानों में जाने का लाभ प्राप्त हो जाता है। तो देखिए कितना बड़ा लाभ है, लेकिन दुर्भाग्यवश लोगों की श्रद्धा नहीं है। अगर किसी को कहा भी जाए तो वो कहेंगे क्या प्रमाण है, हम विश्वास नहीं करते। इसका लाभ उठाने के बजाय लोग अभी चांद पे जाने के लिए, इस लोक में जाने के लिए, उस ग्रह में जाने के लिए रॉकेट की तैयारी करते हैं ताकि हम बैठ के वहां चले जाएं। रूपा जी कहते थे ये कितने धन का नुकसान है, मूल्यवान मनुष्य जीवन का नुकसान है। केवल चांद या इधर उधर जाने से क्या लाभ, हमें तो गोलोक वृंदावन जाना है, वैकुंठ जगत में जाना है। सारे ब्रह्मांड में भी अगर हम भ्रमण कर लें और पूरी तरह से शुद्ध हो जाएं, तो उससे अधिक लाभ चार बार विग्रह की परिक्रमा करने से होगा, जो कि हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कह सकता है कि मैं मंदिर की परिक्रमा नहीं कर सकता या कम से कम भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। विशेष करके जो लोग भारत में रहते हैं उनके लिए तो ये अवसर है ही। तो ये है मंदिर की परिक्रमा करने का लाभ। तीसवा संस्कृत का बताना होगा, बाद में मैंने लिखा नहीं है इसको, क्योंकि समय बचाना था हमें। वैसे हर एक श्लोक का संस्कृत बता दे जाएंगे तो काफी समय लग जाएगा उसमें। अगर ये चार पांच महीने का होता तो आराम से हर एक श्लोक का विश्लेषण करके करके आराम से चलते। परिक्रमा के लिए वो परिक्रमा ही है, परिक्रमो परिक्रमा परिक्रमो कहा है उसके लिए। और आगे है अर्चना तीसवा, और संस्कृत में भी अर्चनम है। वैसे अर्चना ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जितने भी नियमों का वर्णन श्रील रूप गोस्वामी ने किया है इनमें से करीब करीब 14-15 नियम तो केवल अर्चना से संबंधित हैं। कई बार दोहराए जाते हैं कोई नियम, वैसे अर्चना के भी कई अंग होते हैं। तो यहां अर्चना का अर्थ ये होता है कि ऐसे सामग्री, ऐसे पदार्थों को भगवान को अर्पण करना, मंत्र उच्चारण द्वारा ऐसे प्राथमिक कार्यों को करने के पश्चात, जैसे भूत शुद्धि है और न्यास है। आप में से जो अर्चय विग्रह की पूजा करते हैं आपको पता है कि कई प्रारंभिक कार्य होते हैं अर्चय विग्रह की सेवा करने के पहले। तो इन कार्यों के बाद फिर मंत्रों के द्वारा हम भगवान को तरह तरह के पदार्थ अर्पण करते हैं, जैसे फूल अर्पण करते हैं, या हम गंध अर्पण करते हैं, या हम अगरबत्ती अर्पण करते हैं, चामर अर्पण करते हैं। तो ये सब चीज, कभी कभी हम वस्त्र अर्पण करते हैं, आभूषण अर्पण करते हैं, ये सब अर्चना है। तो अर्चना की परिभाषा ये है। तो अर्चना से, अर्चना का क्या मतलब है यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, पढ़िएगा।
अर्चना का अर्थ है मंदिर में अर्चा वगैरह की पूजा करना। इसे संपादित करने से इसकी पुष्टि होती है कि मनुष्य शरीर नहीं अपितु आत्मा है।
इसको भूत शुद्धि कहते हैं। आप में से कितने भक्त पुजारी की सेवा करते हैं या कर चुके हैं? 2-3-4, ठीक। तो आप जानते हैं ना भूत शुद्धि। भूत शुद्धि यानी वो क्रियाएं होती हैं जिनसे हम देह आत्म बुद्धि से परे हो जाते हैं, अपने आप को आत्मा समझकर, कृष्ण का दास समझकर हम ये सेवा करते हैं। तो ये प्रभुपाद जी भूत शुद्धि शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन वैसे कहना चाहते हैं प्रभुपाद उसी चीज को। तो भगवान की मूर्ति की जो सेवा की जाती है उसे अर्चना कहते हैं। और आगे फिर श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में बतलाया गया है कि केवल भगवान श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह की सेवा करने से सारे ऐश्वर्य जो कि पृथ्वी लोक पर, स्वर्ग लोक पर, ब्रह्म लोक पर, पाताल लोक में या अष्टांग योग की सिद्धियां प्राप्त करने से उपलब्ध होती हैं, वो केवल एक अर्चना पद्धति से हो सकती हैं। जीव गोस्वामी बताते हैं कि अर्चना को हमें भक्ति के अन्य अंगों का प्रतीक भी समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल अर्चना करने से और नाम जप करने से नहीं होगा, ऐसे नहीं है। अर्चना अर्थात सर्व भक्ति के अंग, जितने भी समस्त अंग हैं भक्ति के, उनको संपन्न करने से हर तरह के ऐश्वर्य वगैरह हमें उपलब्ध हो जाएंगे। अच्छा, आगे पढ़िए, विष्णु रहस्य में का क्या कहा गया है नीचे। विष्णु रहस्य नहीं, इस अर्चना के भीतर, ये तो आप अगले आइटम में चले गए। तो कितने आसान तरीके हैं, देखिए। केवल जो भगवान श्री विष्णु या कृष्ण के सेवा में, अर्चना में लगा हुआ है या भक्ति में लगा हुआ है, वो वैकुंठ लोक में प्रवेश करने का अधिकारी व्यक्ति बन जाता है। अच्छा, 31वां नियम, भगवान की सेवा करना। तो इसके लिए संस्कृत शब्द है परिचर्या। परिचर्या मतलब सेवा करना। भगवद गीता में यह शब्द कहां आता है? 18वें अध्याय तक पहुंच गए हैं आप, नहीं? चार वर्णों का जो वर्णन आता है और हरेक वर्ण के कर्तव्यों को की व्याख्या कर रहे हैं श्री कृष्ण। बोलिए। परिचर्या का मार्ग शूद्रों के लिए बताया गया है। परिचर्यात्मकम शूद्रस्यापि, शूद्रों का कार्य है, उनका कर्तव्य है परिचर्या, सेवा करना अन्यों की, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करना शूद्रों का कर्तव्य होता है। लेकिन यहां परिचर्या मतलब भगवान की सेवा। शूद्रों का कर्तव्य, जैसे ब्राह्मणों के कर्तव्य होते हैं, क्षत्रियों के, वैश्यों के, शूद्रों के, तो वैसे शूद्रों का कर्तव्य होता है अन्य तीन वर्णों की सेवा करना। तो यहां पर परिचर्या शब्द का अर्थ है भगवान के श्री विग्रह की सेवा करना। विशेष करके अर्चना सेवा की बात यहां पर की जा रही है। और श्री रूप गोस्वामी यहां दो प्रकार के परिचर्या की बात करते हैं। एक है भगवान के श्री विग्रह का श्रृंगार करना अनेक पदार्थों के द्वारा। श्रृंगार कैसे हम कर सकते हैं? भगवान के श्री विग्रह का श्रृंगार, बताइए कौन से आइटम्स हम उपयोग करते हैं? वस्त्र, आभूषण, पुष्पमालाएं, चंदन, अगरबत्ती, नहीं श्रृंगार करने के लिए तो अगरबत्ती नहीं इस्तेमाल करते, मोर मयूर पक्ष है, और ऐसे कितने चीजें हैं जो हम भगवान के श्रृंगार के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये पहले प्रकार की परिचर्या है। और दूसरे प्रकार की परिचर्या है जो हम चामर आदि से करते हैं, मोर पंख हम अर्पण करते हैं, या हम चामर से भगवान की सेवा करते हैं, या उनको पालकी में बिठाते हैं, है ना, रथ में सवार करते हैं। तो ये दूसरे प्रकार की परिचर्या है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ विशेष करके परिचर्या का मतलब है कि भगवान को राजा के समान सेवा करना। तो ये अंतर है अर्चना और परिचर्या में, कि परिचर्या में विशेष करके बड़े ऐश्वर्यशाली उपासना या आराधना की चर्चा की गई है। तो बताइए विष्णु रहस्य में क्या कहा गया है इस संदर्भ में।
जो व्यक्ति भगवान की सेवा का वैसा ही प्रबंध करता है जैसा कि राजा के लिए उसके सेवक करते हैं, तो वह मृत्यु के बाद निश्चित रूप से कृष्ण के धाम को जाता है।
तो एक साधारण राजा की सेवा लोग ऐसे करते हैं तो भगवान की सेवा क्यों नहीं? और अगर ऐसे हम भगवान की सेवा करेंगे तो अवश्य हमें भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। जितना जितनी हमारी क्षमता है उतना हमें करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इतने ऐश्वर्य से भगवान की आराधना नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, परंतु जितना हमारे पास है, जितनी हमारी क्षमता है, उतना तो कम से कम हमें करना चाहिए। आगे पढ़िएगा।
वस्तुतः भारत के मंदिर शाही महलों राजभवनों की तरह लगते हैं। वे सामान्य भवन नहीं होते, क्योंकि कृष्ण की पूजा उसी तरह की जानी चाहिए जिस तरह राजा की पूजा उसके महल में की जाती है। अतः वृंदावन में सैकड़ों मंदिर हैं जिनमें अर्चा वगैरह की पूजा राजा के समान की जाती है।
तो कहते वो प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर कि जिस भवन में भगवान विराजे हुए हैं वो अन्य भवनों की तरह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से भगवान की आराधना की जा रही है कि मानो एक राजा की जा रही हो, और सबसे बड़े राजा तो वही हैं। एक संत एक बार बता रहे थे कि जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता वो एक पशु के समान है। भव मतलब भगवान, उसका घर जो है वो जंगल हो जाता है, और जंगल में कौन रहता है? पशु रहता है। तो ऐसा क्यों वो बोल रहे थे? वो कह रहे थे कि घर को भवन कहते हैं, अब उसमें से भव या भगवान निकाल दीजिए तो क्या रह जाता है? वन। तो वन में कौन रहता है? पशु। तो जिन व्यक्तियों ने अपने घर में, अपने भवन में भव भगवान के लिए स्थान नहीं दिया, वो घर वन बन जाता है और उसमें रहने वाले व्यक्ति पशु तुल्य हो जाते हैं। सुंदर बात है ना? तो दूसरों को जाके सुनाइए ये बात। आप जो भी आप सुनते हैं ना उसको जाके दोहराइए, ये स्मरण करने का सबसे अच्छा तरीका है और कोई चीज सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपको कोई चीज अच्छी तरह से समझना है तो उसको सिखाइए, उसके बारे में दूसरों को बताइए, क्योंकि बताते समय आपको समझना चाहिए, समझने के बगैर आप कैसे बताएंगे दूसरों को। और अगर ठीक से नहीं समझा है तो कुछ गलत मत बताइए, जो समझा है वास्तव में जो सत्य है वही बताइए। वो यहाँ जो वैधि मार्ग में, विधि मार्ग में, वैधि भक्ति में जो अर्चना होती है भगवान की, वो ऐसे ही ऐश्वर्य भाव से होती है, मानो कि उस जिस भाव में लक्ष्मी नारायण की सेवा की जा रही है। राधा कृष्ण की सेवा वास्तव में रागानुग स्तर पे होती है, वो स्वाभाविक जो भाव से होता है, भाव युक्त जो सेवा होती है, ऐसे होना चाहिए। जो षड गोस्वामी वगैरह हैं वो पहले जब अपने अपने अर्चा विग्रह की सेवा करते थे तो कोई मंदिर भी नहीं थे, उनके पास कोई साधन नहीं था, कोई धन नहीं था। यहां जब पास में ही सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी की सेवा करते थे तो बहुत ही साधारण भोजन उनको अर्पण करते थे भोग के लिए, कुछ हुआ नहीं करता था, वो तो माधुकरी करते थे, थोड़ा आटा वगैरह लिया, थोड़े कुछ चपाती रोटी वगैरह बना दिए, और अगर सब्जी मिली तो मिली, नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसे थोड़ा कुछ अर्पण कर लेते थे। तो एक बार मदन मोहन जी ने उनसे क्या कहा, अरे थोड़ा नमक तो दे दो, साथ में रोटी में थोड़ा नमक तो होना चाहिए। और सनातन गोस्वामी ने क्या कहा, आज नमक मांग रहे हो, कल कुछ मिठाई मांगोगे, परसों कुछ घी मांगोगे, कुछ क्या मांगोगे, मुझे थोड़ी समय है ये सब करने के लिए। मैं तो एक भिक्षुक हूं और यहाँ आपकी किताबें लिखने में, आपके ग्रंथ लिखने में मेरा सारा समय जा रहा है, तो मैं ये सब एकत्र करने बैठ जाऊंगा तो ग्रंथ कौन लिखेगा यहाँ। तो आप संतुष्ट रहिए, जो मेरे पास जो आप मुझे देते हैं वही मैं आपको दिला रहा हूं। तो ये है रागानुगा भक्ति के स्तर पर, भाव भाव से करना, इसकी नकल हम नहीं कर सकते। कई बार हमारे संस्था में कई एक दो बार ऐसे पुजारी मिल जाते जो ऐसे नियम भंग करते हैं, बहुत ही ज्यादा स्नेह दिखाते हैं अर्च्य विग्रह के प्रति, कभी विग्रह का आलिंगन करते हैं वगैरह पूजा करते समय, ऐसे करना उचित नहीं है। ये विधि भक्ति के स्तर में वर्जित है, बड़े सम्मान से भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस जाके हम आलिंगन करें या कुछ करें विग्रह की, विग्रह के साथ बड़े सम्मान से रहना चाहिए। विग्रह के सामने जब हम कोई सेवा कर रहे हैं, चाहे वो श्रृंगार हो, चाहे हम आरती उतार रहे हो, चाहे हम भोग चढ़ा रहे हो, चाहे उनको उठा रहे हो, सुला रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, उनके सामने बड़े सम्मान से अपने आप को पेश कराना चाहिए। आपस में बातचीत नहीं करना पुजारियों के लिए आवश्यक है, और करना भी है तो बिल्कुल हल्के आवाज में, इशारे से ज्यादा काम चलाने का प्रयास करना चाहिए, और बिल्कुल कोई झगड़ा तो करना ही नहीं चाहिए। मतभेद भी हो गया, अरे तुमने ये थाली ऐसे क्यों रखी, वैसे क्यों, नहीं, जो सब बाद में देखना है वो बाहर देखना है, यहाँ नहीं, भगवान के सामने नहीं, भगवान के सामने गुस्सा नहीं होना है। तो ऐसे कई नियम है, तो नियमों का पालन करते करते हमें इस भाव को हमेशा रखना है कि ये भगवान है। ऐसे ऐश्वर्य की थोड़ी बहुत भावना होनी चाहिए विधि भक्ति के स्तर में, क्योंकि समय के पहले हम अगर उस भाव को व्यक्त करने का प्रयत्न करेंगे तो वो सच्चा भाव नहीं होगा, क्योंकि हृदय का शुद्धिकरण अभी तक पूरी तरह से हुआ नहीं है। इसलिए हमें विधि अनुसार ही चलना चाहिए। अच्छा, फिर नारदीय पुराण में क्या कहा गया है, देखिए अब क्या कहें, कितने प्रमाण एक के बाद एक के बाद एक। भगवान के धाम में जाने के लिए किसी व्यक्ति को क्या करने के लिए तैयार होना चाहिए, बस कुछ क्षण रुकना है मंदिर में, मंदिर में आके रुकना है। वास्तव में यहाँ रूप गोस्वामी कहते हैं एक मुहूर्त भी या आधा मुहूर्त भी। एक मुहूर्त यानी कितने मिनट, किसी को पता है, 48 मिनट, 48 मिनट्स एक मुहूर्त। तो कोई 50 मिनट बैठे, कोई 20 मिनट भी बैठे, 20-25 मिनट भी बैठे, तो इस पुराण में क्या कहा गया है कि वो भगवान के धाम को प्राप्त कर जाएगा। जो व्यक्ति केवल एक बार आके ऐसे थोड़ा समय बिताता है कृष्ण मंदिर के भीतर, उसे ये गति प्राप्त होती है, तो उनके बारे में क्या कहना जो अपने जीवन भर भगवान की परिचर्या में लगे हुए हैं। हम कल्पना कर सकते हैं उनको कैसी गति की प्राप्ति होगी। हाँ, तो सवाल ये है कि कोई पापी व्यक्ति आता है मंदिर में, मंदिर में एक घंटा बैठ के चले जाता है, फिर से पाप करता है, तो उसका क्या होता है। अच्छा, अभी आप बताइए इसका उत्तर। भक्ति सिंधु यहां तक पहुंचे हैं, है ना, कौन सा अध्याय है ये, 10वां है ना। लेकिन वो धाम में जाएगा नहीं जाएगा, कई जन्मों के बाद जाता है। आप क्या बोल रहे थे, क्रमशः। अच्छा देखिए, आगे चल के भी हम चर्चा करने वाले हैं, वो बाद में आएगा जब हम विज्ञप्ति की बात करेंगे। एक बार प्रभुपाद जी ने किसी ने पूछा था कि ऐसे कहा गया है कि जगन्नाथ रथ यात्रा के समय जो रस्सी होती है, जो रथ खींच रही होती है, उसका स्पर्श करने मात्र से हम वैकुंठ जगत की प्राप्ति कर सकते हैं, तो इसको कैसे समझना चाहिए? तो हम एक बार खींचेंगे रथ को, हम भगवत धाम चले जाएंगे, और हम पाप करते रहेंगे, कुछ भी करेंगे तो क्या होगा? तो प्रभुपाद जी ने इसके लिए उत्तर दिया कि जब ऐसे श्लोक होते हैं जिनमें बताया जाता है कि केवल स्पर्श करने से हम वैकुंठ जगत की प्राप्ति करेंगे, एक बार दर्शन करने से हम भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे आदि, तो हमें समझ लेना चाहिए कि इसका मतलब है कि भगवान के धाम का द्वार खुल गया है। ये नहीं कि आप बस स्पर्श कर लिया और तुरंत उसी क्षण जो है शरीर त्याग कर आप वैकुंठ चले गए, ऐसा नहीं। इसका मतलब है कि आपने ये सुकृति प्राप्त कर ली है और ये आपका भक्ति का जीवन प्रारंभ हो गया। अब ये जो आपने पाया है उसका विनाश कभी होगा नहीं, और धीरे धीरे से जैसे ये पूंजी बढ़ती जाएगी आपकी आध्यात्मिक पूंजी, तो वैसे 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 आप परिपूर्णता की ओर अग्रसर होते रहेंगे, और जब सिद्धि प्राप्त करेंगे तो फिर चले जाएंगे। परंतु कहने का मतलब ये है कि आपने ये सुकृति करके, भगवान की सेवा करके द्वार खोल दिए, अभी आपको आगे बढ़ना है इस पथ में, मार्ग में आप चल पड़े। अभी चलते चलते आप इधर उधर भटक जाएंगे तो उतना ज्यादा समय लगेगा, बस इतना ही है। दो जन्म के बजाय हो सकता है 100 जन्म लगे, 1000 जन्म लगे, 1,00,000 जन्म लगे, परंतु हम कितने जन्मों से यहां भौतिक जगत में हैं, कोई बता सकते हैं? नहीं, अनगिनत जन्म हुए हैं यहां। हमारे भौतिक जगत में इतिहास को अगर ढूंढ निकालना है तो संभव नहीं है। तो कितने लाखों करोड़ों जन्म हमने बिताए हैं यहां पर, और अगर इनके बाद अगर 50-100 जन्म भी लग जाए तो कौन सी बड़ी बात है? अगर आप समझ लीजिए बंबई से दिल्ली आ रहे हैं, और दिल्ली से फिर आप वृंदावन आ रहे हैं, और बस आप यहां पहुंच गए कोसी के पास, या कोसी के थोड़ा आगे पहुंच गए आप, और आ गए आप वृंदावन से थोड़े ही दूर पर हैं, बस पहुंच ही गए ना, अभी बस थोड़े समय की बात। अगर आप कहेंगे कि इतनी देर से हम इतने दूर से आए, लेकिन यहां देखिए तो समय कितना कम है, अभी आप बस 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो उसी प्रकार से हालांकि हमें लगता है कि ओ 100 जन्म लगेंगे, 10 जन्म लगेंगे, 2 जन्म लगेंगे, परंतु आप अगर ये सोचेंगे कि हमने कितने जन्म आज तक बिताए हैं, उसकी तुलना में ये तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो इन सारे श्लोकों में जहां हम ये ऐसा सब सुनते हैं, हमें इस बात को याद रखना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान के मंदिर में आके बैठता है एक मुहूर्त या आधा मुहूर्त, तो क्या होता है? अभी आप उत्तर दो।
तो फिर उसके लिए भक्ति के द्वार
खुल जाते हैं। और आगे चल के अगर वो नहीं जाएगा तो, अगर वो भक्ति नहीं करेगा तो
उसकी वो नष्ट नहीं
होगा। और आगे क्रमशः धीरे 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 विकास होगा उसका। फर्क क्या पड़ेगा? केवल थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा उसको बस, और 100 जन्म थोड़े दुख भुगतना पड़ेगा उसको यहां भौतिक जगत में, बस। 100 जन्म क्या है, 1000 जन्म क्या है? अभी आपको वो तो हर जन्म में जान निकल जाती है, हर जन्म में मृत्यु आती है। हाँ वो समझ गए, काफी है बिल्कुल। वो इसलिए आप कह रहे हैं क्योंकि आपको ज्ञान हो गया है, लेकिन अन्य योनियों में ऐसा ज्ञान नहीं होता, और मनुष्य योनि में भी अगर सत्संग ना हो तो ऐसा ज्ञान नहीं होता। प्रभुपाद जी जब एक अमेरिकन विश्वविद्यालय में प्रवचन दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि मनुष्य को चाहिए कि वो बड़े सावधानी से रहे, ऐसा अपने जीवन को बिताए जिससे कि उसे अगला जन्म निम्न योनि में न मिले, वो कुत्ता बिल्ली न बने, क्योंकि मनुष्य जीवन से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो एक बड़े बुद्धिमान विद्यार्थी ने पूछा कि कुत्ते बनने में क्या बुराई है कुत्ता बनने में। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना चाहोगे क्या? और उस विद्यार्थी ने उत्तर दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्या क्या खराबी है, कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बने, कुछ भी बनेंगे। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो भगवान पूर्ण करेंगे। तो ऐसे है, ज्ञान किसको होता है, किसको ऐसे लगता है कि जान निकल रही है? जो भक्त हैं, जिनको जानकारी है, वो ऐसा सोचते हैं और वो सही मार्ग में लग जाते हैं। और जो अन्य मनुष्य भी हैं जिनको ये भी लगता हो कि जान निकल जा रही है परंतु उनको कोई रास्ता नहीं है, तो फिर वो भगवान को छोड़कर किसी दूसरी चीज का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। कोई साम्यवादी बन जाता है, कोई नक्सलाइट बन जाता है, कोई चोर बन जाता है, कोई शराबी बन जाता है, ऐसे होता है। हम जब ये कह रहे हैं कि बस केवल 100 जन्म, हमें याद रखना है कि कितने जन्म बीत चुके हैं, करोड़ों 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 जन्मों में 100 जन्म क्या चीज है। बंबई से वृंदावन की दूरी कितनी है? बंबई से होकर दिल्ली, दिल्ली से होकर वृंदावन आएंगे कितने किलोमीटर होगा? करीब करीब 1500 तो होगा, समझ लीजिए 1500 किलोमीटर है। और अगर वृंदावन से आप 2 किलोमीटर की दूरी पे है, जब आप चलते आ रहे हैं तो आपको लगता है अरे रे 2 किलोमीटर इतना दूर चलना है, परंतु चल के आए कितना आप, प्राय हाँ 1498 किलोमीटर चल के आए हैं आप, अब बस 2 ही किलोमीटर रह गए। तो एक देखने की दृष्टि है, लेकिन इसका तात्पर्य यह है कि एक बार व्यक्ति ऐसा कुछ कर देता है, जैसे भगवान के मंदिर में आके बैठता है, दर्शन करता है, भगवान का नाम सुनता है, तो उसका भाग्य खुल जाता है, अब वो इस लाइन में चला गया। अब बीच बीच में कभी इधर उधर भटक जाता है तो थोड़ा समय बढ़ जाता है बस। जैसे समझ लीजिए एक व्यक्ति बहुत भटक रहा है रेलवे स्टेशन के ऊपर, उसको टिकट नहीं, में कहां जाना है, यहां उसको पता नहीं कहां ये जाना है, आखिर में उसको पता चल जाता है, आखिर में वो बैठ जाता है गाड़ी में। तो ऐसे है, और गाड़ी चलेगी अभी आगे, आपको क्या करना है, वो पैसेंजर को क्या करना है, केवल गाड़ी में बैठे रहना है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति मंदिर में आता है या भगवान का दर्शन करता है, वो गाड़ी में बैठ गया, अब वो गाड़ी से उतर जाएगा तो क्या किया जा सकता है? अब वो कोई स्टेशन में गाड़ी जब रुकी तो वहां उतर गया, अरे यहां समोसे बहुत अच्छे मिलते हैं, चलो खा लेते हैं, वो खाते खाते क्या हो गया, गाड़ी निकल गई, तो दूसरी गाड़ी के लिए इंतजार करता है, फिर बैठ जाता है। गाड़ी आगे अगले स्टेशन पर जाती है, अरे यहां बहुत ये अच्छा मिलता है, चलो देखते हैं, तो सही उतर जाता है, वहां गाड़ी चली जाती है। तो इस प्रकार से जब से व्यक्ति अज्ञात सुकृति को प्राप्त करता है, वो गाड़ी में बैठ जाता है और जा रहा होता है भगवान की ओर, केवल उसका दुर्भाग्य ये होता है कि बीच में उतरते जाता है समोसे खाने के लिए, यही बात है बस। इसलिए जो 24 घंटे में यात्रा हो जाने वाली थी उसको कहीं 10-12 दिन लग जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट स्पष्ट हो गया। तो इतने सारे जो श्लोक हैं जिनमें इस प्रकार की चीज बताई हुई है कि एक बार ऐसा करने से डायरेक्ट वो भगवान के धाम में चले जाएगा, तो इस भाव से हमें इन सारी चीजों को समझना चाहिए। आगे चल के हम सुनने वाले हैं कि जो भगवान के सामने आकर अपने भाव भरी प्रार्थना को व्यक्त करता है, उसके लिए मोक्ष के द्वार की जो क्या है, लैच को क्या बोलते हैं, वो दरवाजे के बाहर होता है, कड़ी जो है खुल जाती है। तो इसी प्रकार से कड़ी खुल जाती है हमारे लिए, भगवान का दर्शन कर लिया, भगवान के मंदिर में बैठ गए, अब कड़ी खोल कर भगवान द्वार में, द्वार खुल गया है और हम वहीं पर बैठे रहे तो लाभ नहीं होगा, चलना चाहिए ना आगे, आगे बढ़ना चाहिए भगवान की ओर। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया ना? तो उत्तर मिल गया आपको। धीरे 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 से प्रगति करता रहेगा, सबके लिए द्वार खुलता नहीं है। अब एक आदमी के लिए खुल गया समझ लीजिए, अब द्वार खुला तो उसको लंबे रास्ते में जाना है अभी आगे। उसको वन वे स्ट्रीट मिल गया, अब वो जा रहा है आगे आगे आगे। अब जाते जाते क्या हो रहा है कि अन्य लोग भी हैं जो उस रास्ते में जा रहे हैं। थोड़े लोग ऐसे हैं जो बस एकाग्र चित्त से आगे बढ़ते जा रहे हैं, जल्दी जल्दी से जा रहे हैं उस मार्ग में, और दूसरे जो इधर उधर भटक रहे हैं उनसे बोलते हैं अरे आओ आओ चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। और थोड़े लोग हैं कभी कभी जल्दी जाते हैं, कभी कभी इधर उधर घूम जाते हैं। तो ऐसे जाना है सबको उधर, मार्ग में चले हुए हैं लेकिन बीच में इधर उधर भटक जाते हैं वो। फिर क्या हो जाता है, क्योंकि अन्य लोग जो है वो उनको खींच लेते हैं। वो कौन है लोग? भक्त हैं। अरे चलो चलो चलना है। लेकिन अन्य हैं जो ऐसे सुकृति प्राप्त नहीं करते हैं, वो उन्हें वो द्वार को द्वार के अंदर प्रवेश करने के लिए भी नहीं मिलता है। तो वो इधर उधर भटक रहे होते हैं, अंदर ही यहां परिक्रमा कर रहे होते हैं, जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं 84 लाख योनियों की में परिक्रमा कर रहे होते हैं। ठीक है, निश्चय होगा बिल्कुल, निश्चय ही होगा, लेकिन कितना समय लगेगा वो निश्चय नहीं है। होगा जरूर, अब वो उसके ऊपर है, क्योंकि अज्ञात सुकृति की पूंजी जब बढ़ जाती है ना, और साथ साथ पाप पुण्य में वो अटका रहता है। पाप पुण्य अपने आप को चुकाते रहता है, पापों का फल दुख भोगने से चुका देता है, पुण्यों का फल सुख भोगने से चुका देता है। फिर रह जाता क्या है, पाप पुण्य के चक्कर में अज्ञात सुकृति अगर उसकी बढ़ती रही तो एक दिन ऐसा आ जाएगा जब पाप पुण्य के चक्कर से छूट कर केवल भक्ति में लग जाएगा। और जब इस तरह से लग जाएगा तो फिर अभी दूसरों की तरह जाएगा जो ऐसे एकाग्र चित्त से आगे जा रहे हैं, इधर उधर नहीं देख रहे हैं जो।
खूब पकाया जाता है वो।
मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। गीता में भगवान क्या कहते हैं, क्या मतलब है इसका श्लोक का? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। वर्तमान मतलब हम सुन चुके हैं, वर्तमान शब्द का मतलब साधु, वर्तमान पथ, वर्तमान मतलब पथ। जैसे वर्तमान प्रदर्शक गुरु, ये कौन होते हैं? वो जो हमें पथ दिखलाते हैं, भले वो खुद भक्त हो या न हो। अरे तुम्हें पता नहीं इस्कॉन का मंदिर है, इस्कॉन क्या चीज है? अरे बहुत अच्छा मंदिर है, यहाँ अच्छे अच्छे प्रवचन होते हैं, हमने सुना, जाओ जाओ वहां जाओ। भले वो खुद नहीं कर रहा होगा भक्ति, नहीं जाता है खुद, लेकिन दूसरे किसी को भेज देता है जाओ। ऐसे कई बार होता है, कई भक्त हम जानते हैं जिनको किसी ने भेजा जबकि वो खुद नहीं जा रहे थे, और ये व्यक्ति आके भक्त बन गए और वो अभी तक है वही। तो लेकिन हुए वो वर्तमान प्रदर्शक गुरु, वर्तमान वर्तमान प्रदर्शक वर्तमान, वर्तमान मतलब पथ, पथ दिखलाने वाले व्यक्ति। भले वो भक्ति में उसे मार्गदर्शन करने के लिए योग्य न हो, जब कैसे करना, भागवत में क्या लिखा है, भले वो ये सब चीजें समझाने के लिए योग्य न हो, परंतु पहले उन्होंने पथ दिखला दिया था। तो सभी लोग भगवान की ओर चल रहे हैं। प्रभुपाद जी ने एक बार कहा कि भारत में जो भक्त जो लोग जन्म लेते हैं वो कृष्ण के बहुत करीब होते हैं, और जो लोग विदेशों में जन्म लेते हैं तो वो कृष्ण से थोड़े दूर होते हैं। परंतु अंतर ये है दोनों में, और एक अंतर ये है कि भारत में जो लोग हैं वो भगवान के पास में होते हुए भी भगवान से दूर चले जा रहे हैं, और जो विदेशों में लोग हैं जो भगवान से दूर हैं वो भगवान की ओर चले आ रहे हैं। इसलिए इतने विदेशी भक्तों की संख्या ज्यादा है, और हमारे भारतीय भक्त लोग जो है, भक्त तो नहीं लेकिन अन्य लोग, वो केवल तत्व जिज्ञासा करने के बजाय कौन बनेगा करोड़पति जिज्ञासा करते हैं, है ना, ये जिज्ञासा में सब लोग लगे हुए हैं। ये दुर्भाग्य है। तो भारत में जन्म लेने का मतलब है, क्योंकि ये पुण्य भूमि है, यहां द्वार तो खुला हुआ है भारतवासियों के लिए, भारत में जन्म लेने वालों के लिए भक्ति के द्वार खुले हुए हैं। इतने तीर्थ स्थान हैं सब जगह, बचपन से व्यक्ति भगवान का नाम सुनता है, गीता भागवत कुछ ना कुछ तो कानों में जाता है। लोगों के नाम भी इस प्रकार से होते हैं, किसी का नाम है कृष्ण, किसी का नाम है गोविंद। हाँ, आजकल सब कुछ बदल गया है, टॉनी बंटी सब ऐसे सब लगाते हैं, परंतु पहले तो ऐसा सिस्टम नहीं था, सब भगवान के नाम लगाए जाते थे। तो न चाहते हुए न जानते हुए भी कितनी अज्ञात सुकृति हो रही है। क्योंकि ये लोग, कई लोग हैं जो नेता वगैरह हैं, उनके भी नाम ऐसे हैं, कृष्ण राम है, ये है वो है, तो लोग इनके नाम का उच्चारण करते हैं और कितना लाभ होता है, अज्ञात सुकृति। जैसे अजामिल ने भगवान के नाम का उच्चारण किया न चाहते हुए न जानते हुए, उसी प्रकार से जब भारत में रहकर सब भगवान के अलग अलग नाम है उनका उच्चारण करते हैं तो कितना लाभ होता है। यहां जगह जगह मंदिर हैं, आजकल टीवी भी खोलिए तो जगह जगह आध्यात्मिक कार्यक्रम भी दिखाई पड़ते हैं, कुछ ना कुछ तो जाएगा व्यक्ति के अंदर। इसलिए भक्ति के द्वार यहां खुले हुए रहते हैं, परंतु इतनी गंभीरता से लोग नहीं लेते हैं, यह समस्या है। सब पाश्चात्य देश की ओर जा रहे हैं। कल हम गए थे एक स्कूल में, यहां हमें निमंत्रण दिया था कि आप आइए मुख्य अतिथि बनिए, यहाँ कोई बच्चों का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि हमें भी यहाँ वृंदावन में रहना है, मंदिर को वृंदावन में रहते हुए मंदिर का संबंध अन्यों के साथ अच्छा होना चाहिए, नहीं तो समस्याएं होती हैं। और तो वहाँ और भी कई लोग प्रतिष्ठित नागरिक आने वाले थे, तो उन सबसे मिलना थोड़ा अच्छा है, मंदिर के लिए अच्छा होता है। तो हम गए थे तो वहां बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम कुछ हो रहे थे, प्रतियोगिताएं वगैरह, और जिस प्रकार से उनका संगीत है और जिस प्रकार से उनके नृत्य है, तो समझ में आता है कि समय काफी बदल गया है। हालांकि उन गीतों में राधा कृष्ण या कृष्ण का नाम तो था, परंतु जिस प्रकार का संगीत वो था और जिस प्रकार के नृत्य वो लोग कर रहे थे, इसे समझ में आता है कि संस्कृति जल्दी ही क्षीण होती जा रही है। और उसके बाद उस समय हम वहां से उठ के चले आए बहाना बनाकर, जब एक लड़का सामने आया ये सब बीच में और ब्रेक डांस करने लगा, और बड़े ही वहां के जो सचिव या जो भी कोई थे वहां, वो जब बड़े गर्व से वो कह रहे थे कि अब ऐसा आप नृत्य देखेंगे, और वो लड़का आया और वो ब्रेक डांस करने लगा, तो मेरा हार्ट ब्रेक हो गया उधर। तो हम सोचे अब यहाँ क्या बैठेंगे, ब्रेक डांस बैठने देखने के लिए हम वृंदावन नहीं आए, है ना। तो ऐसा है, अब वृंदावन में भी ये सब चल रहे हैं, बच्चों को ये सब सिखलाया जा रहा है। अब बाहर जाके बोलिएगा मत, हमारे लिए परेशानी हो जाएगी, नहीं तो सुनेंगे आप ऐसे हमारे बारे में बोल रहे थे, हमारे स्कूल के बारे में। तो ये समस्या है। देखिए वृंदावन में रहते हुए, भारत के अन्य देशों की अन्य प्रांतों की बात तो दूर है, वृंदावन में रहते हुए जब इतना द्वार खुल गया है, फिर अभी वो पीछे हटने जा रहे हैं, समोसे लेने जा रहे हैं, देखिए क्या कर सकते हैं, है ना। तो पूरा फायदा उठाना चाहिए। इन अवसरों का हम लाभ नहीं उठाएंगे तो जहां है वहीं पर रह जाएंगे। हाँ, तो आगे पढ़िए। तो क्योंकि इतना लाभ होता है मंदिर होने से और लोग बड़े बड़े मंदिरों को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। तो जैसे हम उस दिन बता रहे थे ना कि एक सन्यासी कह रहे थे, जब कोई ईर्ष्या कर रहे थे कि भगवान के लिए इतना मुकुट क्यों बना रहे हैं, ये क्यों बना रहे हैं, क्यों बनाते हैं भगवान के लिए भव्य मंदिर। भगवान के लिए जितना बड़ा मंदिर बनाए उतना छोटा है भगवान के लिए। परंतु यथाशक्ति जब हम बनाते हैं ऐसे मंदिर, हम इसलिए ऐसे बनाते हैं ताकि लोग आकर्षित हो जाएं। प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने पूछा कि आप तो साधु हैं, फिर आप ये बड़े बड़े मंदिर क्यों बनाते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा, हमें इन बड़े बड़े मंदिरों की आवश्यकता नहीं है, हम यहां वृक्ष के नीचे बैठकर हरे कृष्ण जप करके भागवत पढ़ने में पूरी तरह से संतुष्ट हैं। परंतु आप आएंगे मेरे पास सुनने के लिए? अगर मैं किसी पेड़ के नीचे बैठा हूं आप आएंगे? नहीं। लेकिन अब यहां भव्य मंदिर बना है तो आप आ रहे हैं, तो आप मेरी वजह से नहीं आ रहे हैं, आप मंदिर की वजह से आ रहे हैं। तो जब एक बहुत ही आकर्षक स्थान हो जाता है तो लोग आ जाते हैं आकर्षित होकर। चलो देखते हैं, हमने सुना बहुत बड़ा मंदिर है यहां पर, चलो देखते हैं, बहुत सुंदर मंदिर है। तो ये है उद्देश्य बड़े मंदिर बनाने का। लोग आकृष्ट होते हैं, मंदिर में आकर भगवान का दर्शन करते हैं, मंदिर में थोड़ी देर बैठते हैं और ये सारे लाभ मिल जाते हैं, भगवत धाम जाने के द्वार खुल जाते हैं, कड़ी खुल जाती है। अब फिर से जाकर दरवाजा बंद करके कड़ी लगाना है तो उसमें मुश्किल है ना। लेकिन कम से कम जो दरवाजा खुल गया तो अभी हमें आगे चलते रहना है। अच्छा, आगे भी पृथ्वी महाराज अपने प्रजा को क्या उपदेश देते हैं ये श्रीमद् भागवत में बतलाया हुआ है, कृपया पढ़िएगा।
इस संबंध में श्रीमद् भागवत में राजा का अपनी प्रजा से एक कथन आता है। हे नागरिकों, ध्यान रहे कि भगवान हरि समस्त पतित बद्धात्माओं के वास्तविक मोक्ष दाता है। बद्धात्माओं के उद्धार का यह कार्य अन्य देवता नहीं कर सकते, क्योंकि देवतागण स्वयं बद्ध है। एक बद्धात्मा दूसरे बद्धात्मा का उद्धार नहीं कर सकता, केवल कृष्ण या उनका प्रमाणिक प्रतिनिधि ही उसका उद्धार कर सकता है। विष्णु के अंगूठे से बहने वाली गंगा नदी का जल पृथ्वी लोक तथा अन्य लोकों में गिरता है, जहां वह बद्ध पापात्माओं का उद्धार करता है। अतएव ऐसे पुरुषों के उद्धार के विषय में क्या कहा जाए जो सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। यदि उन्होंने अनेक जन्मों के पाप कृत्यों का समूह एकत्रित कर रखा हो तो भी वे उनकी मुक्ति निश्चित है।
तो केवल भगवान ही मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? मुकुंद। देवता वो भी मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो स्वयं मुक्त नहीं है। 11वें स्कंद में ऐसे बताया गया है कि जो व्यक्ति देवताओं का सहारा लेकर इस भव सागर को पार करना चाहता है, वो ऐसे है कि जैसे एक व्यक्ति एक कुत्ते के पूंछ को पकड़ के समुद्र पार करना चाहता है। कभी संभव है ऐसे? है या नहीं है? नहीं है। ठीक उसी प्रकार से देवताओं का आश्रय लेकर भवसागर को पार करना यह संभव नहीं है, केवल श्री कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति करने से हमारे जितने भी पाप अनेक जन्मों से एकत्र हुए हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं और हम भगवत भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। अब 32वां नियम गायन, इसके लिए रूप गोस्वामी कहते हैं संस्कृत में गीतम। लिंग पुराण में क्या कहा गया है पढ़िएगा कोई।
लिंग पुराण में भगवान विषयक महिमागान तथा गायन का लेख मिलता है। यह इस प्रकार है, जो ब्राह्मण भगवान की महिमा के गायन में निरंतर लगा रहता है वह अवश्य ही भगवान के लोक को जाता है। भगवान कृष्ण इस गायन को शिवजी द्वारा की कई स्तुतियों से भी अधिक सम्मान प्रदान करते हैं।
देखिए इस तरह से नहीं तो उस तरह, उस तरह से नहीं तो और किसी तरह से भगवान ने कितने पथ दिए हैं उन तक पहुंचने के लिए। किसी को आराधना में रुचि नहीं है या मंत्र उच्चारण करने में कठिनाई है तो आप ऐसे आइए। कितने रास्ते बताए हैं भगवान ने, वास्तव में हमारे भाग्य की कोई सीमा नहीं है। और जब हम ये भक्ति रसामृत सेतु सिंधु पढ़ते हैं और सीख लेते हैं कि भक्ति के अनेकानेक विधियों का पालन कर से इतना करके इतना लाभ होगा, अगर हमारी श्रद्धा होगी तो शीघ्र ही हम भगवत धाम पहुंचने में समर्थ हो जाएंगे। इसलिए हमें इस बात को मन में ठान लेना चाहिए कि ये मेरा आखिरी जन्म होना चाहिए। हालांकि हमारी भावना ये तो रहती है कि अगर भगवान चाहें तो हम यहीं पर रहने के लिए तैयार हैं, परंतु तैयारी इस तरह से होनी चाहिए कि ये आखिरी जन्म हमारा हो। शिवजी की वंदना से अधिक प्रिय भक्तों के गीत हैं जो भगवान की प्रशंसा करते हैं। फिर 33वां नियम संकीर्तन, और इसके लिए रूप गोस्वामी कहते हैं संकीर्तनम। तो संकीर्तन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? नाम लीला गुण आदि नाम उच्चैर भाषा तो कीर्तनम, यह परिभाषा है। नाम लीला गुण आदि नाम, नाम लीला गुण आदि नाम उच्चैर ऊंचे, ऊंचा मतलब ऊंचे, भाषा मतलब ऊंचे स्वर में, उच्चैर भाषा तु कीर्तनम। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसको कीर्तन कहते हैं, उच्चारण करना, इसको कीर्तन कहते हैं। तो पढ़िए यही परिभाषा यहां दे रहे हैं प्रभुपाद जी।
जब कोई व्यक्ति भगवान की लीलाओं गुणों रूप आदि की महिमा का उच्च स्वर से उच्चारण करता है तो वह संकीर्तन कहलाता है। संकीर्तन का अर्थ भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक उच्चारण भी है।
और आगे विष्णु धर्म ये भी एक शास्त्र है, इसमें क्या बताया गया है जरा पढ़िएगा।
हे राजा, कृष्ण शब्द इतना शुभ है कि जो भी इस पवित्र नाम का कीर्तन करता है, वह अनेकानेक जन्मों से चले आ रहे पाप कर्मों के फलों से तुरंत छूट जाता है।
वैसे यहाँ रूप गोस्वामी संकीर्तन के तीन प्रकार बताते हैं, नाम, लीला, गुण, है ना। नाम संकीर्तन, लीला संकीर्तन, गुण संकीर्तन। अब ये पहला जो उदाहरण है विष्णु धर्म का जो श्लोक है, ये कौन सा है, कौन सा उदाहरण है? नाम संकीर्तन के लिए। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते भस्मी भवन्ति राजेंद्र महापातक कोटयः। कि हे राजन, कृष्ण इति मंगलम नाम, कृष्ण का नाम जो है वो अति मंगल है, मंगलमय है, और जिसका ऊंचे स्वर में यस्य वाची प्रवर्तते, जो बहुत उच्च स्वर में जिसका उच्चारण किया जाता है, भस्मी भवन्ति, भस्म हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, महापातक कोटयः, कोटयः मतलब कोटि कोटि, करोड़, कोटि मतलब करोड़, तो हमारे कोटि कोटि जो महापाप है, महापातक मतलब बड़े बड़े भयंकर पाप, भस्मी भवन्ति, भस्म हो जाते हैं, क्या करने से, कृष्ण के मंगलमय नामों का उच्च स्वर में उच्चारण करने से। तो यह है नाम संकीर्तन का उदाहरण। और साथ साथ चैतन्य चरितामृत में क्या कहा गया है,
चैतन्य चरितामृत में निम्नलिखित कथन मिलता है, जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण एक बार करता है, वह जितने भी पाप कर सकता है वो उससे भी अधिक पाप कर्मों के फलों के फलों को नष्ट कर देता है।
तो सोच लीजिए कितनी गहरी बात है ये, कि कोई व्यक्ति है वो करोड़ों जन्मों से यहां भौतिक जगत में पड़ा है, भौतिक जगत की परिक्रमा कर रहा है, अलग अलग योनियों में जन्म लेके, अगर उसने एक बार शुद्धता से भगवान कृष्ण का नाम लिया तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। न केवल उसने जो सारे पाप किए हुए हैं वो नष्ट हो जाएंगे, बल्कि जितने पाप कर सकता था और आगे चल के कर भी सकता है वो सारे भी नष्ट हो जाएंगे एक कृष्ण नाम से। क्यों भी श्रद्धा है, नहीं ज्यादा है, बहुत बढ़ाई बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है या क्या लग रहा है आपको, सच है या झूठ?
ये तो सच है।
तो अभी हम सब ने कितनी बार कृष्ण का नाम लिया है, कई बार है? अभी पाप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो वास्तव में ये सत्य है, नाम अपराध कई हैं। हरि नाम की महिमा को काल्पनिक समझना, कौन सा नाम अपराध है, पांचवा, हरि नाम की महिमा को काल्पनिक समझना, मतलब जब हरि नाम की महिमा का वर्णन शास्त्र में आता है हम सोचेंगे अरे नहीं नहीं ये तो बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला है, ऐसे थोड़ी होता है, एक कृष्ण नाम करने से इतना सब हो जाएगा, अरे हम लोग इतने समय से कृष्ण नाम ले रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है। तो नहीं, हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। एक ऐसे अश्रद्धालु व्यक्ति थे जिनका वर्णन चैतन्य चरितामृत में आता है, जब हरिदास ठाकुर ने हरि नाम की महिमा की व्याख्या की और कहा कि हरि नाम लेने मात्र से व्यक्ति न केवल पापों को नष्ट कर सकता है परंतु वह मुक्त भी हो जाता है, तो ये दूसरा ये व्यक्ति था जिसका नाम था, बताइए, गोपाल चापाल, नहीं वो अलग लीला है, गोपाल चापाल अलग थे, गोपाल चक्रवर्ती, तो वो ब्राह्मण थे, जाति ब्राह्मण, दिखने में बड़े सुंदर, बहुत बड़े विद्वान, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा, वो कृष्ण भक्त थे नहीं। तो भरी सभा में वो उठे और जोर से आवाज करके बोलने लगे, अरे ये साधु क्या बोल रहे हैं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अरे जो महान ज्ञानी योगी वगैरह होते हैं, साधु होते हैं, वो इतने लंबे समय तक तपस्या करते हैं, कभी कभी कई जन्म लग जाते हैं, और फिर भी ऐसे साधुओं को विरला ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और ये बता रहे हैं कि एक बार किसी भी साधारण व्यक्ति ने भी कृष्ण नाम लेने से मुक्ति प्राप्त कर लेगा, ये तो संभव नहीं है। अगर ऐसा कहना सच है, अगर उनका कहना झूठ है तो उनका नाक भले गिर जाए, मतलब कुष्ठ रोग हो जाए और नाक गिर जाए। तो ये जब गोपाल चक्रवर्ती ने कहा तो हाहाकार मच गया सारे तह वहां पे भरी सभा में। तो आमंत्रण किसको दिया था हरिदास ठाकुर को यहां आने के लिए प्रवचन के लिए? हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार, तो कौन थे? नाम सुना है ना आपने, रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और चाचा, वो वैष्णव थे। तो उन्होंने बुलाया था हरिदास ठाकुर को। और ये जो गोपाल चक्रवर्ती है वो इनकी ओर से या इनका प्रतिनिधित्व करते हुए कर वसूली का काम करते थे लोगों से। तो वो हैरान हो गए कि उनके ही घर में ऐसे कहकर इन्होंने एक संत का अपमान किया है। तो वो उठे और तुरंत उसको उस नौकरी से, सेवा से निकाल दिया, कहा कि यहां से चले जाओ, कभी आना नहीं वापस। और सारे लोग जो हैं बड़े आपस में बात करते, अरे क्या कह डाला, क्या कह डाला इस व्यक्ति ने। फिर हरिदास ठाकुर उसके पहले उन्होंने उत्तर दिया कि मैं जो कह रहा हूं ये कोई बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कह रहा, ये तो शास्त्रों का वर्णन है। और वास्तव में कृष्ण नाम का सही उद्देश्य न पाप को नष्ट करना है और न मुक्ति प्राप्त करना है। कृष्ण नाम लेने का वास्तविक उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो आगे चल के मुक्ति से आगे भी व्यक्ति को कृष्ण प्रेम मिल सकता है केवल कृष्ण नाम लेने से। लेकिन ये व्याख्या जो है गोपाल चक्रवर्ती को अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो ऐसे बोल पड़ा। और ऐसे कहा जाता है कि बाद में उसको कुष्ठ रोग हो गया और उसका ही सुंदर नाक गिर पड़ा और उसकी उंगलियां भी निकल गईं, क्योंकि उसने महाभागवत हरिदास ठाकुर का अपमान किया था, ऐसे अपराध किया उसने, महान वैष्णव अपराध किया। तो यहां जो भी ऐसे वर्णन हम सुनते हैं या पढ़ते हैं इनको हमें सत्य मान लेना चाहिए। तो गलती केवल हमारी है कि हम कृष्ण नाम वास्तव में नहीं ले पा रहे हैं, सच्चा कृष्ण नाम हम नहीं ले पा रहे हैं, हम तो नाम का आभास भी नहीं ले पा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे अभी कृष्ण बलराम मंदिर में जो चौकीदार लोग हैं कभी कभी बंदूक लेके घूमते हैं ना, अभी घूम रहे हैं बंदूक लेकर। आपने देखा किस लिए घूम रहे हैं? बंदरों को दूर करने के लिए। वो एयर गन है, उसमें कोई गोली नहीं है। हाँ गनमैन है वो अलग बात है, उनकी उनके बंदूक तो सही बंदूक है लेकिन बंदरों के लिए जो बंदूक इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें कोई गोलियां नहीं है। यूं ही बस वो आवाज करता है, ढुप करके आवाज आता है, बंदर घबरा जाते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन इसमें गोली कोई है नहीं। तो केवल ऐसे लगता है सुनकर कि ये गोली चल रही है क्योंकि आवाज उस प्रकार की आ रही है। ठीक उसी प्रकार से जब हृदय में कृष्ण प्रेम होता नहीं है, जो मुख से जो शब्द आ रहा है ऐसे लगता है कि ये कृष्ण नाम है, परंतु है नहीं, वो एयरगन की तरह ढुप करके आवाज आता है, कृष्ण ऐसे लगता है परंतु सच्चा कृष्ण नाम है नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण नाम का उच्चारण मुख से नहीं होना चाहिए, हृदय से होना चाहिए। केवल मुख से हरि नाम लेने से ठीक है, कम से कम उतना तो हो रहा है, परंतु शुद्ध नाम वो होगा जब बड़े प्रेम से हृदय से आएगा। ठीक है, तो ये है नाम कीर्तनम। और आगे श्रीमद् भागवत के सातवें स्कंद में प्रहलाद जी की प्रार्थना के द्वारा रूप गोस्वामी लीला कीर्तनम का उदाहरण देंगे। और विस्तार के लिए इस समय समय नहीं होगा, क्योंकि हमें बहुत आगे बढ़ना है। अलग से नाम के ऊपर जब कोई कथा होगी वगैरह तो उस समय किया जा सकता है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा विषय है, लंबा विषय है और आगे हमें बहुत कुछ चर्चा करनी है। कृष्ण प्रेम, तो सच्चा नाम, शुद्ध नाम निकलेगा मुंह से, शुद्ध नाम कृष्ण प्रेम की अवस्था से अवस्था में प्रकट होता है। जब हम अपराध की अवस्था में होते हैं तो उसको नाम अपराध कहते हैं, अपराध युक्त नाम। तो ठीक है, लीला कीर्तनम का उदाहरण पढ़िए। प्रहलाद जी नरसिंह देव से क्या कहते हैं?
हे भगवान नरसिंह, यदि मैं आपके सेवक पद को प्राप्त करूं तो मेरे लिए आपकी लीलाओं के बारे में श्रवण करवाना संभव हो सकता है। आप परम मित्र, परम आराध्य अच्छा विग्रह हैं। आपकी लीलाएं दिव्य हैं और उनका श्रवण करने मात्र से सारे पाप कर्म दूर हो सकते हैं। अतएव मैं उन पाप कर्मों की परवाह नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी लीलाओं का श्रवण करने मात्र से मैं भौतिक आसक्ति के कलमश से छुटकारा पा सकूंगा।
तो भक्त कभी पापों से डरता नहीं है, क्यों? क्योंकि केवल भगवान के पवित्र लीलाओं का श्रवण करके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जब प्रहलाद कह रहे हैं कि वो पापों से डरते नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कह रहे हैं कि मैं पाप करने से डरता नहीं हूं। वो पापों के फल से नहीं डरते हैं, हाँ, ये समझ लेना चाहिए। प्रहलाद महाराज के मन में तो पाप करने की इच्छा भी नहीं होगी, लेकिन कहीं हम इसको गलत ना समझ बैठे कि प्रहलाद कहते हैं कि पापों से मुझे कोई डर नहीं, इसका मतलब पापों के फल से, जो हमने पूर्व किए होंगे पाप, अगर वो आएंगे भी मेरे जीवन में बहुत कष्ट लेकर भी आएंगे तो मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि केवल आपके लीलाओं को श्रवण करने मात्र से ढेर सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन भक्त पाप करने से बहुत डरता है, वो करता नहीं है। वो कर्म से, उनके पाप की वजह से तो नहीं है, वो तो भगवान की योजना है। प्रहलाद महाराज कितने महान भक्त हैं ये सारे दुनिया को दिखाने के लिए, कि इतनी इतने कठिनाई के बाद भी उनकी भक्ति बिल्कुल अटल रही, हमें दिखाने के लिए कि हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए। भक्त हो तो ऐसा भगवान बताना चाहते हैं। अच्छा, और आगे तो इस प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसी प्रकार ऐसे कई गीत हैं भगवान के लीलाओं के बारे में। उदाहरणार्थ ब्रह्म संहिता है, नारद पंचरात्र जो नारद मुनि ने गाया हुआ है, फिर श्रीमद् भागवत है जो कि शुकदेव गोस्वामी ने गाया हुआ है। और अगर कोई व्यक्ति इन गीतों को गा लेता है या सुन भी लेता है तो वो बड़े आसानी से इस भवसागर को पार कर पाएगा। तो इसलिए भक्त को चाहिए कि वो अपना अधिक से अधिक समय ऐसे कार्यों में बिताए। भगवत गीता, गीत, उद्धव गीत, गोपी गीत, कितने सारे गीत हैं। और आगे फिर गुण कीर्तनम का उदाहरण दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में नारद मुनि व्यासदेव से कह रहे हैं, ये गुण कीर्तनम का उदाहरण है। पहला था नाम कीर्तनम, दूसरा लीला कीर्तनम और अब तीसरा गुण कीर्तनम। तो पढ़िए नारद मुनि व्यासदेव को क्या कह रहे हैं।
हे व्यास, यह जान लो कि ऐसे सारे लोग जो तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, वेद स्तुतियों के उच्चारण, दिव्य ज्ञान के चिंतन तथा दान कर्म करने में लगे हैं वे सभी अपने इन पुण्य कर्मों के द्वारा भक्तों के का सानिध्य चाहते हैं और भगवान की महिमा का कीर्तन करना चाहते हैं। यहाँ यह इंगित हुआ है कि भगवान का कीर्तन एवं महिमा गायन ही जीव का परम कार्य है।
बस तो यही अपने को करते रहना है। कीर्तन शब्द का अर्थ क्या है वास्तव में? कीर्ति, कीर्ति क्या है? यश। तो भगवान के यश के बारे में कुछ बोलते रहना, भगवान का की प्रशंसा करना, यही है कीर्तन। तो उनके गुणों की प्रशंसा करना। वास्तव में जब हरे कृष्ण महामंत्र हम करते हैं तो ये न केवल नाम कीर्तन है, ये सब कुछ है। हम जब कृष्ण कहते हैं तो ये क्या है? भगवान के गुणों का वर्णन नहीं है? क्यों है? सर्व आकर्षक, षड ऐश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण। तो नाम, गुण, लीला सब एक साथ में आ जाती हैं। जैसे गोविंद कहते हैं तो ये क्या है? या गोपाल, ये क्या है? नाम है परंतु वर्णन भी है। किस चीज का वर्णन है? लीला का वर्णन है। कौन सी लीला? गोपालन। इस नाम से हम जान सकते हैं कि भगवान कृष्ण गौओं का पालन करते हैं। तो नाम और लीला, कृष्ण नाम और गुण, है ना? अच्छा, आगे चौतीसवा नियम। अब चौतीसवा है जप, जपह, संस्कृत में है ये जपह। तो जप की परिभाषा क्या है, इसके लिए रूप गोस्वामी कहते हैं, मंत्रस्य सुलघु उच्चारव जप इति अभिधीयते। मंत्रस्य सुलघु उच्चारो, लघु सुलघु उच्चारो जप इति अभिधीयते। अब इसका मतलब बताइए। किसी मंत्र का उच्चारण धीमे स्वर से करना, इसे जप कहते हैं। लघु और सुलघु, लघु मतलब छोटा या धीमा या हल्का, सुलघु मतलब बहुत थोड़े से हल्के ढंग से करना, तो इसको जप कहते हैं। और इसी बात को यहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जप और कीर्तन में भेद करते हैं, हालांकि दोनों का उद्देश्य एक ही है, और एक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों एक ही हैं, फिर भी एक भेद किया जाता है। तो पढ़िए क्या कहते हैं प्रभुपाद जी। क्या कहा जाता है? कहते हैं, पढ़िए।
किसी मंत्र या स्तुति का धीरे धीरे तथा मृदु वाणी में उच्चारण करना जप कहलाता है, और उसी मंत्र का जोर से उच्च स्वर से उच्चारण करना कीर्तन कहलाता है। उदाहरणार्थ महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का मृदु स्वर में अपने सुनने के लिए ही उच्चारण करना जप कहलाता है, किंतु इसी मंत्र को अन्य लोगों द्वारा सुने जाने के लिए उच्च स्वर से उच्चारण करना कीर्तन कहलाता है। महामंत्र का प्रयोग जप तथा कीर्तन दोनों के लिए हो सकता है। जब जप किया जाता है तो वह जापक के निजी लाभ के लिए होता है, किंतु जब उसी का कीर्तन किया जाता है तो वह अन्य सुनने वालों के लाभ के लिए होता है।
तो इस संदर्भ में पद्म पुराण में क्या कहा गया है?
कुछ मतलब पवित्र नाम का उच्चारण करता है उसके लिए मुक्ति तथा स्वर्गीय सुख के मार्ग तुरंत खुल जाते हैं।
तो अभी जब सबको ठीक से करना है ताकि हम बहुत ही शीघ्र स्वर्गलोक को प्राप्त कर सकें। करना है स्वर्गलोक की प्राप्ति, कहीं किसी ने विरोध नहीं किया, सबने हाँ मिला दिया, हमें हाँ क्या नहीं चाहिए ना, तो आपको विरोध करना चाहिए। ऐसे हम कुछ बोल देंगे फिर आप हाँ बोलेंगे तो नहीं होगा, आपको कहना चाहिए नहीं 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 ऐसा नहीं होता है, नहीं हमें स्वर्ग में नहीं जाना है। कहने का मतलब ये है कि यह पुराण में बताया है कि जो भक्त नहीं भी है अगर वो कर रहा होगा फिर भी कम से कम वो स्वर्ग लोक तो पहुंच जाएगा, श्रेष्ठ गति को तो प्राप्त करेगा पृथ्वी लोक के अपेक्षा में। ठीक है, जो भक्त नहीं है भले वो भी कर ले, अगर वो पुण्य उस हरे कृष्ण महामंत्र को पुण्य समझकर कर रहा है ताकि मुझे ऐश्वर्य प्राप्त होगा तो ठीक है उसे प्राप्त हो जाएगा, वो चले जाएगा। लेकिन यहां इस बात को कहने का उद्देश्य ये है कि केवल ऐसे जप और कीर्तन करने से लाभ कितना होता है। नाम अपराध हो जाएगा इसलिए उसे कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि स्वर्ग तो कोई बहुत आध्यात्मिक गति तो है नहीं, दंड ये मिलेगा कि कृष्ण प्रेम उसको नहीं मिलेगा। और स्वर्ग में जाना ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, स्वर्ग जाना ये दंड नहीं है तो क्या है? बिल्कुल, जैसे हमारे भक्त लोग जो वृंदावन छोड़कर अमेरिका चले जाते हैं उनको लग रहा है कि उन बहुत अच्छा वातावरण है लेकिन वहां दंड मिलता है जाकर, वहां भयंकर भौतिक वातावरण में रह के भक्ति के ऊपर असर पड़ ही जाता है, वो भी दंड है वास्तव में। देवकी नंदन प्रभु रहते हैं अमेरिका में, आप कह सकते हैं ना कि वहां वातावरण कैसा है अमेरिका में, वहां भक्त लोग कितने कम हैं और वहां बाहर कोई कितने मंदिर हैं, कितने तीर्थ स्थान हैं, कितना मुश्किल है वहां भक्ति करना। केवल भक्त लोग जब आपस को एक दूसरे को संग देते हैं परस्पर तभी भक्ति संभव है, अन्यथा नहीं। क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्मों में बहुत पुण्य किए थे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कर्मोन्मुखी पुण्य जिन्होंने अधिक किए हैं उनको ऐसे ऐश्वर्यशाली प्रदेशों में जन्म मिलता है। तो वो स्वर्गीय या भूलोक के स्वर्ग है, ये हमारे पृथ्वीलोक के स्वर्ग है, स्विट्जरलैंड, हवाई, अमेरिका के थोड़े थोड़े भाग ऐसे हैं। तीन प्रकार के स्वर्ग बताए जाते हैं भागवत में। एक है दिव्य स्वर्ग, वास्तव में दिव्य नहीं है, देवताओं का है इसलिए दिव्य कहा जाता है। दूसरा है भौम स्वर्ग, जो पृथ्वी लोक के ऊपर जो ऐसे स्थान हैं जो बहुत रमणीय होते हैं। और तीसरा है बिल्व स्वर्ग, जो निम्न श्रेणी के लोकों में वातावरण जैसे सुतल लोक आदि में है। बिल्व, बिल 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 स्वर्ग, बिल्व नहीं बिल, बिल स्वर्ग, तो वो भी भौम स्वर्ग है, तो वो भी एक स्वर्गीय आकर्षण है। भक्ति, भक्ति में तो भक्त केवल गोलोक वृंदावन जाना चाहता है अगर भगवान चाहे तो, और कोई दूसरी जगह में नहीं जाना चाहता। अगर भगवान भेजे तो कहीं जाएगा परंतु अपनी इच्छा से कहीं नहीं जाता, तो यह भी तो स्वर्गलोक के जाने के समान है। ठीक है। अब आइए निवेदन या विज्ञप्ति 35वां नियम है। वो इसीलिए कि उन्होंने ऐसे पुण्य किए हुए हैं बहुत सारे पूर्व जन्मों में, लेकिन अभी पाप कर रहे हैं तो आगे चल के ये सब नष्ट होने वाला है। बिल्कुल, सबसे उपयुक्त।
तो उस हिसाब से यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी का कारण अगर पाप है, पाप है, तो यहाँ पे ये रिसोर्सेज की कमी में का मतलब क्या?
रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बिल्कुल किसी चीज की कमी नहीं है। कमी तो है केवल किस चीज की? कृष्ण भावना की। कृष्ण भावना होगी तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण का भी सवाल है, परंतु मूल कारण है कृष्ण भक्ति का अभाव, यही मूल कारण है। और भारतवर्ष में लोग ज्यादा गरीब क्यों हैं? भगवान जानबूझकर उनको गरीब रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये धनी बन जाएगा तो मुझे भूल जाएगा, इसलिए थोड़ा गरीब रखते हैं।
गरीबी पाप का फल नहीं है,
है भी और एक उपाय भी है। ज्यादा गरीब होने से और ज्यादा अमीर होने से, दोनों होने से भगवान की भक्ति करना मुश्किल हो जाता है। ज्यादा गरीब होने से जब पेट में कोई भोजन नहीं है तो खाली पेट भगवान का नाम लेना थोड़ा मुश्किल होता है, और ज्यादा भी जब हो जाए अपने पास तो ऐश्वर्य में इतने हम उन्मत्त हो जाते हैं कि भगवान का नाम नहीं ले सकते। तो ये बीच का स्थान है, न ज्यादा परेशानी है न ज्यादा ऐश्वर्य भोग है। जैसे विश्व में देखिए ऐसे कई स्थान हैं जहां पे बहुत ऐश्वर्य है, जैसे अमेरिका आदि देशों में, और ऐसे कई स्थान हैं जैसे एस्किमो के पास जाइए ग्रीनलैंड में, या रेगिस्तान में सहारा डेजर्ट में अफ्रीका में जाइए, या जंगलों में जाइए, कैसे वातावरण है वहां पर। तो भारतवर्ष जो है बीच में है, न ज्यादा ऐश्वर्य है न ज्यादा कुछ कठिनाई है, बीच में है। ठीक उसी प्रकार की जैसे पृथ्वी लोक नरक और स्वर्ग के बीच में, स्वर्ग लोक में भोग बहुत ज्यादा है, नरक लोक में पीड़ा बहुत ज्यादा है, दोनों अवस्थाओं में भगवान का भजन करना बहुत ही कठिन मुश्किल हो जाता है, परंतु पृथ्वी लोक में भगवान का भजन करना अच्छा आसान हो जाता है, और विशेष करके पृथ्वी लोक में भारत भूमि। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ते जन्म हुई लुजार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो जिसने भारत वर्ष में जन्म लिया है उसका कर्तव्य ये बनता है कि वो अपने जीवन को सार्थक करे और अन्यों के ऊपर ये उपकार करे कि उनको कृष्ण भक्ति का भेंट प्रदान करें। यही है ना समस्या, सत्य है। इतना सब होते हुए भी वो सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें सुख नहीं दे सकती हैं, बल्कि जितना ज्यादा आपके पास होगा उतना ज्यादा आप दुखी बन जाएंगे, आपका तनाव उतना ही बढ़ जाएगा। तो भारत में न ज्यादा भोग है और न ज्यादा कठिनाई है, बीच में है हम, इसलिए उपयुक्त स्थान है भक्ति करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब निवेदन या विज्ञप्ति 35वां प्रार्थना करने की। तो ये उदाहरण जो आपको हम बता रहे थे, मुक्ति के द्वार की कड़ी खुल जाती है। तो श्लोक इस प्रकार से है, हरिम उद्दिश्य यत किंचित। हरिम, हरिम उद्दिश्य मतलब उद्देश्य बनाकर, हरिम उद्दिश्य यत किंचित कृतम विज्ञापनम गिरा। कृतम मतलब किया जाता है, कृतम विज्ञापनम, विज्ञापनम विज्ञान, विज्ञापनम हिंदी में ज्ञान कहते हैं लेकिन संस्कृत में ज्ञान ज्ञ होता है वो, मराठी में ज्ञान कहते हैं लेकिन वास्तव में बीच में ना ज्ञान है ना ज्ञान है, वो ज्ञान है। ठीक है, हरिम उद्दिश्य यत किंचित कृतम विज्ञापनम गिरा। मोक्ष द्वारा गलान, मोक्ष द्वारा गलान, द्वार अगलान, अगलान मतलब कड़ी, मोक्ष द्वारा गलान मोक्षस तेनैव विहितस्तव। तेनैव विहितस तव। तो फिर से पढ़ लेते हैं, हरिम उद्दिश्य यत किंचित कृतम विज्ञापनम गिरा, मोक्ष द्वारा गलान मोक्षस तेनैव विहितस तव। तो अभी इसका मतलब आप बताइए, अभी तो आप सब संस्कृत पंडित हो गए हैं, आप जानते हैं, बताइए।
यदि हम अपने वाणी से भगवान को उपदेश करके थोड़ा सा भी उनसे निवेदन करते हैं, तो हमारे मोक्ष के द्वारों की कड़ी अपने
आप खुल। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये स्कंद पुराण का श्लोक है, तो पढ़िएगा प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं इसके बारे में।
स्कंद पुराण में भगवान के चरण कमलों में निवेदन विज्ञप्ति,
विज्ञप्ति
विज्ञप्ति विषयक एक कथन है जिसमें कहा गया है कि शांत भक्ति, शांत भक्त निम्नलिखित तीन विधियों से कृष्ण के प्रति अपनी विज्ञप्ति कर सकते हैं।
हाँ ठीक है, एक मिनट। तो विज्ञप्ति जो है ये हमारी प्रार्थना है, जब हम प्रार्थना के माध्यम से हमारे भावना को व्यक्त करते हैं भगवान के सामने तो इसे विज्ञप्ति कहते हैं। और अगला नियम कौन सा है, प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना। तो 35 और 36, 35वें 36वें नियम में अंतर क्या है बताइए।
प्रसिद्ध प्रार्थना जो हमारे आचार्य द्वारा की गई प्रार्थना है, और जो हम अपने शब्दों में कोई भी प्रार्थना,
हमारी भावना को हम व्यक्त कर रहे हैं। तो जो प्रसिद्ध प्रार्थनाएं हैं वो प्रार्थनाएं हैं जो शास्त्रों में पाए जाते हैं या कि जिनको महान भक्तों ने कहा है, लेकिन यहां जो विज्ञप्ति की बात की जा रही है वो हमारी भावना है जो हम हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो ऐसे कहा जाता है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, किंतु किस प्रकार की प्रार्थना, जैसे हम कह रहे थे कोई शॉपिंग लिस्ट लेकर नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे विज्ञप्ति तीन प्रकार की होती हैं। अच्छा, वो चार्ट देख सकते हैं क्या, हम चार्ट लगाइए जरा। ये जो भी श्लोक हमने आपको बताए हैं, जैसे हरिम उद्दिश्य यत किंचित आदि, इन सबको कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप करना चाहें तो अवश्य कर सकते हैं, परंतु परीक्षा आदि के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, केवल आपके समझ के लिए और रस वृद्धि के लिए। नहीं, वो चार्ट है ना, आप करके दीजिए। तीन प्रकार के विज्ञप्ति, संप्रार्थनात्मिका, दैन्य बोधिका और लालसामयी। अच्छा, तो ये इनका मतलब क्या है? ये स्कंद पुराण में बतलाया गया है, तीन प्रकार के विज्ञप्तियों का वर्णन स्कंद पुराण में दिया हुआ है। तो पढ़िएगा, कौन से हैं ये तीन प्रकार? निका, संप्रार्थनात्मिका।
अपने आप को विनीत रूप से प्रस्तुत करते हुए। नंबर तीन, लालसा में किसी सिद्धि की इच्छा करते हुए।
तो ये नहीं, ठीक है, बस। तो ये तीन प्रकार के प्रार्थनाएं हैं, विज्ञप्ति हैं। तो पहले संप्रार्थनात्मिका क्या है, आप बोलिए अभी जोर से बोलिए। भावपूर्ण प्रार्थना। और दूसरा दैन्य बोधिका, वास्तव में ब है वो, व नहीं, ब होना, बोध, दैन्य बोधिका। तो क्या है ये दैन्य बोधिका? विनीत रूप से प्रस्तुत करना, बहुत नम्र होना ना। और तीसरा लालसामयी, लालसामयी मतलब किस प्रकार की सिद्धि? आध्यात्मिक सिद्धि, और विशेष करके भक्ति में सिद्धि। कोई भौतिक सिद्धि या इंद्र तृप्ति में या संसार के भीतर की कोई सिद्धि की प्राप्ति की बात यहां पर नहीं हो रही है। तो वास्तव में ऐसे बताया जाता है कि संप्रार्थनात्मिका, ये जो एक प्रार्थना है, वो इसलिए की जाती है कि व्यक्ति अपने भाव को जागृत कराना चाहता है, भाव भक्ति तक पहुंचना चाहता है। संप्रार्थनात्मिका, लेकिन लालसामयी वो ऐसी प्रार्थना है जो कि भक्ति के एक ऊंचे स्तर पे किया जाता है, जिसमें भक्त ने थोड़ा कुछ जान लिया है अपने शाश्वत स्थान के बारे में, या अपने स्वरूप के बारे में, या अपने स्वरूप सिद्धि के बारे में थोड़ा कुछ जान लिया है उसने, वो साक्षात्कार हो चुका है, मतलब काफी ऊंचा पहुंच गया है भक्त। और ऐसे अवस्था में वो अपने स्वरूप सिद्धि में स्थित होने के लिए एक प्रार्थना करता है, या किसी विशेष भक्ति के सेवा के लिए या स्थान के लिए प्रार्थना करता है भगवान से। या लालसामयी में व्यक्ति को थोड़ा बहुत साक्षात्कार हो चुका होता है कि वो भगवान के धाम में क्या है, और वो काफी उन्नत भक्त है, और वो जब प्रार्थना करता है लालसामयी, तो वो एक अपने स्वरूप में की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता है, अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए याचना करता है, या तो फिर एक विशेष प्रकार की सेवा या विशेष प्रकार के वातावरण में जाने के लिए वो लालायित होता है। आध्यात्मिक जगत में मतलब यहां भी हो लेकिन भगवत सेवा में, भक्त के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आध्यात्मिक जगत हो भौतिक जगत हो, क्योंकि उसकी सेवा तो बनी रहेगी चाहे यहां पे हो या भौतिक आध्यात्मिक जगत में हो। अच्छा, अभी आगे पढ़िए तो इसी बात को जो हम अभी बता चुके हैं प्रभुपाद के शब्दों में हम सुन लेते हैं, तो पढ़िएगा लालसामयी का वर्णन करने के बाद आगे, आगे क्या कहते हैं प्रभुपाद जी।
जब भक्त को भगवान के साथ स्वाभाविक संबंध की अनुभूति होती है तो उसे अपनी आदि स्थिति समझ में आ जाती है और वह कृष्ण के मित्र, दास, माता पिता या प्रेमी के रूप में स्थापित होना चाहता है। ये लालसामयी व्यक्ति अर्थात अपनी सहज स्थिति में पहुंचने की लालसा कहलाती है। ये लालसामयी व्यक्ति पूर्ण मुक्ति की अवस्था में होती है और पारिभाषिक दृष्टि से स्वरूप सिद्धि कहलाती है, जिसमें जीव पूर्ण आध्यात्मिक उन्नति तथा आत्म प्रकाश के द्वारा भगवान के साथ अपने मूल संबंध को समझता है।
तो लालसा, लालसा शब्द की का मतलब क्या है?
लोभ।
तो लोभ करने की जो प्रवृत्ति है वो जीव में है, लेकिन इस संसार में इस लोभ का विकृत रूप प्रकट होता है। जब व्यक्ति किसी संसारी चीज के लिए लोभी लोभी हो जाता है, परंतु यही लोभ भगवान की ओर या भक्ति की ओर हमें केंद्रित करना चाहिए। तो लालसामयी प्रार्थना जो है वो बहुत उच्च स्तर से की जाती है। अच्छा, अभी यहां रूप गोस्वामी तीनों प्रकार के प्रार्थनाओं के लिए उदाहरण देते हैं। तो पहला है संप्रार्थनात्मिका विज्ञप्ति, भावपूर्वक प्रार्थना करना। तो इसके लिए पद्म पुराण के एक श्लोक का वर्णन करते हैं, पढ़िएगा कृपया।
हे प्रभु, मुझे पता है कि युवतियों में युवकों के लिए स्वाभाविक स्नेह होता है और युवकों में युवतियों के लिए स्वाभाविक स्नेह पाया जाता है। मेरी आपके चरण कमलों में यह प्रार्थना है कि मेरा मन उसी तरह से आपकी ओर आकृष्ट हो।
तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार से इस संसार के बद्ध जीवों के अंदर ऐसी इच्छाएं या ऐसे आकर्षण स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से मेरे हृदय में आपके प्रति स्वाभाविक तरह से आकर्षण जागृत हो जाए। तो कभी कभी हमारे आचार्य गण इस दुनिया के उदाहरण को दृष्टांतों को देते हैं, क्यों? ताकि हम समझें, क्योंकि ये सब चीजें हमारे अनुभव की होती हैं, देखे सुने होती हैं, तो हम समझ सकते हैं किसी चीज को आसानी से। जब इस दुनिया के उदाहरण दिए जाते हैं तो समझ में आता है, अन्यथा इन चीजों को कैसे हम समझें। किसी चीज का स्पष्टीकरण करने के लिए जिसका हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं है, हम ऐसी किसी चीज से उसकी तुलना करते हैं जिसका ज्ञान है हमें, जो हमारे अनुभव में है। तो ऐसे कई बार शास्त्रों में उदाहरण पाए जाते हैं। परकीय रस का भी उदाहरण चैतन्य महाप्रभु इसी प्रकार से देते हैं। तो ये एक स्वाभाविक आकर्षण जो हृदय में भगवान के प्रति होना चाहिए, इसके लिए प्रार्थना बड़े भक्ति भाव से भावना जो भाव पूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं भक्त। अच्छा आगे चल के दैन्य बोधिका विज्ञप्ति पद्म पुराण। पद्म पुराण में क्या कहा गया है? दैन्य बोधिका मतलब अपने आप को विनीत रूप से प्रस्तुत करना। तो पढ़िएगा पद्म पुराण में क्या कहा गया है।
हे प्रभु मुझसे बढ़कर कोई अन्य पापी जीव नहीं है, नहीं मुझसे बढ़कर कोई अपराधी है। मैं इतना पापी और अपराधी हूँ कि आपके समक्ष अपने पाप कर्मों को अंगीकार करने के लिए आता हूँ तो मुझे लज्जा आती है।
तो यहाँ पर पद्म पुराण में क्या कहा गया, भक्त भगवान के सामने जाता है और क्या कह रहा है कि मेरा जैसा पापी नहीं है। बोलिएगा नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं। मोसम पतित प्रभु ना पाए वे आर। दैन्य बोधिका कि मुझ जैसा पापी व्यक्ति आप कहीं नहीं पाओगे। और भक्त वास्तव में ऐसे सोच रहे हैं, ऐसे नहीं कि केवल कहने के लिए कह रहे हैं, वास्तव में वे हृदय की बात को व्यक्त कर रहे हैं। तो सच्चे भक्त होते हैं अपने आप के बारे में ऐसा ही सोचते हैं। जो नौसुखिया भक्त होते हैं वो अपने आप को बहुत अच्छा भक्त समझते हैं, सोचते मैं कितना प्रगति कर चुका हूं, मैं कितना जानता हूं, मैं कितना अच्छा कीर्तन कर लेता हूं, मैं कितना अच्छा बोल लेता हूं कृष्ण के बारे में। तो ये लक्षण है कि भक्त अभी तक आगे बढ़ा नहीं है भक्ति में। परंतु जो सच्चे भक्त होते हैं, जो बहुत प्रगति कर चुके होते हैं, वो भक्त अपने आप को बहुत ही नीच समझते हैं, अपने आप में कोई गुण है ही नहीं ऐसे मानते हैं। हालांकि अन्यों को ऐसे नहीं समझना चाहिए, अन्यों को जान लेना चाहिए कि ये वास्तव में बहुत ही महान भक्त है, परंतु वो अपने बारे में नम्रता पूर्वक ऐसे कह रहे हैं। ऐसे कई हमारी प्रार्थनाएं हैं। वैसे मैं सोच रहा था कि हमारे वैष्णव भजन अलग अलग गाएं, उदाहरण दें, परंतु फिर समय इतना नहीं है हमारे पास, है ना। ऐसे लालसामयी प्रार्थना है, फिर दैन्य बोधिका प्रार्थना है, भक्ति विनोद ठाकुर की ऐसे कई प्रार्थनाएं हैं। तो इससे ये बातें स्पष्ट और हो जाती हैं। लेकिन ऐसा करते जाएंगे तो फिर हमें सारा साल भर तो लग जाएगा इसके लिए। लेकिन आपकी परीक्षा भी आ रही है, इसलिए जल्दी से आगे बढ़ना भी है। हाँ वो आगे देखते हैं आगे चल के, लेकिन इस समय आगे पद्म पुराण की बात आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसे लज्जित होना, जब भक्त कोई गलत काम करता है और नहीं भी करता है, अपने आप को पापी समझता है, तो वो लज्जित हो जाता है। ऐसे नहीं कि कुछ गलत काम करे उसके बारे में कुछ बुरा सोचे, नहीं मैंने क्या गलती की। कई बार ऐसे देखा जाता है कि कोई व्यक्ति जब गलती करता है सबसे पहले तो इनकार करता है कि मैंने किया ही नहीं। अब जब सबूत सामने रखा जाता है तो फिर बाध्य हो जाता है मानने के लिए कि ठीक है किया किया, लेकिन उसमें क्या वो लोग, वो आदमी भी करता है, वो भी करता है, मुझे ही क्यों पकड़ा गया। तो ये सब भक्त के लक्षण नहीं है। भक्त वो होता है कि किसी को आरोप लगाने के पहले ही पहले वो मान लेता है कि भाई गलती हो गई, हम तो है ही ऐसे, हमारा स्वभाव ऐसे है। तो इन भक्ति के गुणों का अनुशीलन करना ये वैष्णव के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। और फिर जब उसे जब वो स्वीकार कर लेता है कि मेरे से बहुत गलती हुई, लज्जित हो जाता है, तो फिर भगवान की कृपा ऐसे व्यक्ति पर जल्दी ही आ जाती है। परंतु श्रील प्रभुपाद जी चेतावनी दे रहे हैं यहां पर कि इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने कृपा कर ली, भगवान ने क्षमा कर ली गलती करने के बाद, इसलिए हम बार बार वही गलती करते रहें। हरि नाम के प्रति भी ऐसे नहीं होना चाहिए। कौन सा नाम अपराध है? नाम के बल पर पाप करना। कौन सा नाम अपराध? सातवां नाम अपराध, नाम के बल पर पाप करना। ये सोचना कि नाम लेने से तो सारे पाप खत्म हो जाते हैं, तो चलो पाप करते हैं, थोड़ा हरि नाम ले लेते हैं, फिर से पाप करते हैं, फिर से हरि नाम लेते हैं, तो ऐसा करने से नाम के प्रति अपराध हो जाता है और कृष्ण प्रेम कभी भी प्राप्त नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे भावना जो मन में रखते हैं, ऐसे लोग निर्लज्ज हैं। और निर्लज्ज व्यक्ति इस तरह का हो तो फिर वो कभी भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएगा। तो इसके बारे में प्रभुपाद आके काफी विस्तार में कुछ कहते हैं कि ऐसे कभी भी भक्त को करना नहीं चाहिए। और आगे वो कहते हैं कि कई ऐसे उदाहरण देते थे कि चर्च के बारे में, कि विदेशों में लोग चर्च में जाते हैं शनिवार के दिन, और जो पादरी होते हैं वहां उनके सामने बतलाते हैं कि आज सोमवार को मैंने ये पाप किए, मंगलवार को ये पाप किया, बुधवार को ये पाप किया, इतने सारे पाप मुझसे हो गए हफ्ते में। तो पादरी को ये बात कहने से, क्योंकि वो व्यक्त करता है अपनी बातें कि मैंने ऐसे ऐसे पाप किए हैं, तो पाप क्षमा हो जाते हैं। वो कहते हैं यीशु क्राइस्ट के कृपा से सब नष्ट हो जाते हैं। परंतु प्रभुपाद कहते हैं कि अगले हफ्ते सोमवार जब आएगा, या सोमवार की भी प्रतीक्षा नहीं, रविवार से ही शुरू, फिर रविवार से ही अगले हफ्ते का पाप शुरू करते हैं, कोटा अलग अलग होता है उस हफ्ते का। तो फिर ऐसे जो अपने हृदय की बात खोल के बताना, लज्जित होना, इसमें कोई मतलब नहीं है। लज्जित होने का मतलब है कि उसी चीज को हम पुनः कभी नहीं करें। अर्थात लज्जित होने का क्या मतलब है? तो आगे फिर रूप गोस्वामी लाल सामय विज्ञप्ति का उदाहरण देते हैं नारद पंचरात्र से। तो क्या उदाहरण है ये पढ़िएगा।
हे प्रभु, वह दिन कब आएगा जब आप मुझसे अपने शरीर पर पंखा झेलने के लिए कहेंगे और आप स्वेच्छा से ये कहेंगे तुम इस तरह से पंखा करो।
ये सब चीजें केवल उन लोगों के लिए जिनको श्रद्धा है। आप किसी नास्तिक को जाके ऐसे सब बताइए, वो तो सोचे ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या पंखा लगाने की बात करते हैं, क्या है ये। तो इसलिए ये ग्रंथ केवल श्रद्धालु लोगों के लिए है। तो यहां इस प्रार्थना की व्याख्या प्रभुपाद जी आगे करते हैं, क्या मतलब है इसका, आप आगे पढ़िए क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी।
इस श्लोक का अर्थ यह है कि भक्त भगवान के शरीर पर स्वयं पंखा झेलना चाहता है, अर्थात वह भगवान का पार्षद बनना चाहता है।
ये सिद्धि है लालसा। लालसा के क्या है कि एक सिद्धि के लिए ना, तो यहाँ कौन सी सिद्धि चाहता है भक्त? भगवान का पार्षद बनना चाहता है। आगे बढ़िए।
निस्संदेह भक्ति किसी भी हैसियत से, चाहे दास या मित्र या प्रेमी रूप में, वो भगवान के प्रत्यक्ष सानिध्य में रहना चाहता है, किंतु अपनी अपनी विविध रुचि के अनुसार हर कोई इनमें से एक संबंध चाहता है। यहाँ पर भक्त भगवान का दास बनने की लालसा रखता है और वह भगवान को पंखा झलना चाहता है, जैसे उनकी अंतरंगा शक्ति लक्ष्मी जी करती है। यह भी चाहता है कि भगवान प्रसन्नता पूर्वक उसे आदेश दे कि पंखा कैसे झला जाए। यह लालसामयी विज्ञप्ति आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धावस्था है।
तो नारद जी की स्वरूप सिद्धि क्या है, क्या लालसा कर रहे हैं नारद जी? एक भक्त कह रहे हैं केवल नारद जी, नारद पंचरात्र में क्या क्या स्वरूप सिद्धि उनकी है बताइए। आपने कह दिया पार्षद बनना चाहते हैं, और विशेष कौन से सेवा की अभिलाषा करते हैं? भगवान के लिए पंखा चलाना, चामर। तो ऐसा नहीं कि अगर कोई सोचे अरे अनंत काल तक पंखा चलाते रहना है हमें, बस और कोई नहीं है काम, यही बस चकरते रहना, लेकिन उस चीज में भी इतना आनंद है कि व्यक्ति जो जिसने अनुभव नहीं किया वो जान नहीं सकता। और विविधता है सेवा में वहां भगवत धाम में। और भले भगवान के लिए एक ही सेवा क्यों ना करे व्यक्ति, उसमें वो इतनी रुचि प्राप्त करता है कि कभी भी उस सेवा को बंद नहीं करना चाहता है वो। ये है वैकुंठ जगत की खूबी। और इन चीजों को दुनिया के लोग बिल्कुल समझ नहीं सकते हैं, उनके लिए तो ये आश्चर्यजनक बातें हो जाती हैं और विश्वास नहीं करते इन चीजों में वो लोग। परंतु ये आध्यात्मिक जीवन की चरम सीमाएं हैं कि हम इस तरह से जाकर भगवान के सानिध्य को प्राप्त करते हैं, उनकी लीला में शामिल होते हैं। तो ये लालसामयी विज्ञप्ति। और इसी शास्त्र से नारद पंचरात्र से और एक उदाहरण दे रहे हैं लालसामयी विज्ञप्ति के लिए, पढ़िएगा।
हे प्रभु, हे कमलनयन, वह दिन कब आएगा जब मैं यमुना तट पर एक पागल की भांति अपने आपके पवित्र नाम का उच्चारण करता रहूंगा और मेरी आंखों से अविरल अश्रु धारा बहती रहेगी।
इसको जरा घुमाएंगे आप, ये नारद मुनि प्रार्थना करते हैं। ये नारद जी के वचन है, चैतन्य चरितामृत में भी इस श्लोक को पाया जाता है। हमें ये श्लोक अच्छा लगता है। उद्वास्पह, उद्धास्पह नहीं, उद्वास्पह, व कदाहम यमुना तीरे नामानि तव कीर्तयन् उद्वास्पह पुंडरीकाक्ष रचयिष्यामि तांडवम्। तो अभी इस श्लोक का मतलब बताइए, शब्द भेद करके बताइए। कदा, कदा मतलब कब, फिर अहम, कदा हम, कदा अहम, कब मैं यमुना तीरे नामानी तव आपके नामों कीर्तन कीर्तयन करते हुए क्या होगा, उद्वास्पह पुंडरीकाक्ष रचयिष्यामि तांडवम्। तांडव आप सुन चुके हैं, नृत्य। पुंडरीकाक्ष कौन है, कमल नयन, पुंडरीक, जिनके आंखें अक्ष पुंडरीक या कमल के समान हैं। तो कब वो समय आएगा जबकि मैं आपके यमुना के तट पर आपके पवित्र नामों का उच्चारण करूंगा और उस समय मेरे आंखों से आंसू बहने लगेंगी और मैं एक पागल व्यक्ति के समान नृत्य करना शुरू करूंगा। रचित करना, रचना, मैं करूंगा उस चीज की रचना करूंगा, रचयिष्यामि करूंगा। वही बड़े आंखों से आंसू आना, नृत्य करना, बड़े भाव विभोर हो जाऊंगा। उसी प्रकार से प्रभुपद ऐसे इसको ट्रांसलेशन करते हैं, पढ़िएगा फिर से अनुवाद पढ़िए। भाव विभोर होकर जब व्यक्ति ऐसे करता है, उन्मादवन नृत्यति लोक बाह्य है, उन्मादवत, जैसे उन्मत्त व्यक्ति जैसे नृत्य करता है, वैसे वो 11वें स्कंद में श्लोक आपको सुनाए थे ना कल या परसों, हाँ उसी श्लोक का अनुवाद पुनः सुनाइए।
हे प्रभु, हे कमलनयन, वह दिन कब आएगा जब मैं यमुना तट पर एक पागल की भांति आपके पवित्र नाम का उच्चारण करता रहूंगा और मेरी आंखों से अविरल अश्रु धारा बहती रहेगी।
तो लालसामय वास्तव में श्री राजीव गोस्वामी बताते हैं कि ये तो लक्षण भाव के हैं ना, भाव भक्ति के लक्षण हैं। और लालसामयी प्रार्थना वो करते हैं जो पहले से ही भाव भक्ति को प्राप्त हो चुके हैं, परंतु यहां तो ऐसे भाव की अभिलाषा करते हैं, इसका मतलब है वो भाव तक पहुंचे नहीं हैं, परंतु फिर भी क्योंकि वो जो उत्कंठा है, एक प्रकार का लोभ है, वो लालसा लालसामयी प्रार्थना के समान है, इसलिए इसे भी लालसामयी प्रार्थना के वर्ग में बतलाया हुआ है रूप गोस्वामी ने। तो हमें किस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए आप बताइए। पहले दो तो अवश्य करने चाहिए, संप्रार्थनात्मिका, बड़े भक्ति भाव से भगवान के सामने कुछ प्रार्थना करना, हृदय की बात को व्यक्त करना, और दूसरा दैन्य बोधिका कि भगवान मुझे मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरे हृदय में कितने सारे अनर्थ भरे हुए हैं, कितने सारे भौतिक कामनाएं हैं, इनको नष्ट कीजिए, वास्तव में मैं सबसे बड़ा पापी हूं। तो ऐसे विचार कोई भी जाके भगवान के सामने कह सकता है। और आगे चल के अगले पॉइंट में हम जान लेंगे कि कैसे नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, कैसे भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं, उनके लिए नहीं, वो हमें सिखाने के लिए करते हैं वास्तव में, हमारे लिए ये अच्छे उपदेश हैं कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। और लालसा में ही प्रार्थना भी हम लोग रोज गाते हैं, तुलसी पूजा में हम लोग क्या गाते हैं बताइए। सारी प्रार्थना ही तो वो लालसामयी है ना। कल सुबह आप आएंगे तो आप सुनिएगा, अच्छी तरह से ध्यान रखिए, आज जाकर ये पढ़िएगा भजन आप, और इसका मतलब भी पढ़िए, और कल सुबह जब गाया जाएगा तो उसके ऊपर ध्यान कीजिए। और क्या बताया है इस प्रार्थना में, मोर ए अभिलाष विलास कुंज दियोवास, नयने हेरिबो नयने हेरिबो सदा युगल रूप राशि। तो कौन से सिद्धि की लालसा है ये, मोर ए अभिलाष विलास कुंज, विलास कुंज कहाँ है, वृंदावन, सच्चे वृंदावन में जाके मैं क्या दर्शन करूं, युगल रूप कौन है, राधा कृष्ण। तो इस प्रकार की लालसाएं, लालसा की भावनाएं व्यक्त किए जाते हैं। सखीर अनुगत कर, सखी अनुगत मतलब सखियों का अनुगमन करना, सखियों के भी सेवक बनना। तो सखियों के सेविकाओं को क्या कहा जाता है, मंजरी। तो गौड़ीय वैष्णव भाव में विशेष करके मंजरियों का भाव है, ठीक है। और आगे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, पढ़िएगा कौन।
यह दूसरे प्रकार की सिद्धावस्था है। चैतन्य महाप्रभु ने भी कामना की थी कि एक एक क्षण मेरे लिए 12 वर्ष के समान लगे, और आपके आपको न देखने के कारण सारा संसार सुना लगे।
कौन सा श्लोक है ये, युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत सर्वं गोविंद विरहेण मे। तो इसका अर्थ बताइए, युगायितं निमेषेण क्या मतलब,
एक क्षण युग
युग क्षण कौन सा शब्द प्रयोग किया है क्षण के लिए? निमेश, पलक के इसके इससे भी कम, निमेश, निमेशेण। तो एक निमेश कितना लग रहा है? एक युगायतम युग के समान प्रतीत हो रहा है। युगायतम निमेशेण चक्षुषा, चक्षुषा मतलब आंखों से, प्रावृषायतम बह रहा है, क्या बह रहा है? आंसू बह रहे हैं क्या? आगे क्या बताइए? चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम। तो क्या मतलब? संसार शून्य दिख पड़ता है। क्यों? गोविंद विरहेण में, गोविंद के विरह में। तो इस प्रकार की भावना भी यहां व्यक्त करते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ इस संदर्भ में ये उदाहरण दे रहे हैं। तो आगे पढ़िए।
मनुष्य को चाहिए कि भावपूर्ण प्रार्थना करे और भगवान की विशेष प्रकार की सेवा करने के लिए उत्सुक रहे। यह समस्त महान भक्तों का विशेषतया चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है।
अच्छा, आगे भी और प्रभुपाद जी कुछ हमें सिखलाना चाहते हैं, पढ़िएगा।
दूसरे शब्दों में मनुष्य को सीखना चाहिए कि भगवान को किस तरह रोकर पुकारा जाए। इस छोटी सी युक्ति को सीखना चाहिए और किसी विशेष प्रकार की सेवा में लगने के लिए उत्सुक होकर सचमुच रोकर पुकारना चाहिए। यह लौल्यम कहलाता है और ऐसे आंसू सर्वोच्च सिद्धि का मूल्य है। यदि कोई विशेष प्रकार से भगवान से मिलने और उनकी सेवा करने के लिए अत्यधिक उत्सुकता विकसित करता है तो जो लौल्यम कहलाता है, तो उसी मूल्य को चुकाकर वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। अन्यथा किसी भी भौतिक मूल्य के टिकट के बल पर वह भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे प्रवेश के लिए जो मूल्य देना पड़ता है वह यही लौल्यम
लालसामयी,
अर्थात लालसामयी इच्छा तथा महान उत्कंठा है।
तो यहाँ जिस लौल्यम, इसके बारे में भी एक श्लोक है वास्तव में, आगे इसको जरा घुमाइएगा। प्रभुपाद जी इसको भी कोट किया करते थे कई बार। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यमेकलम् जन्मकोटि सुकृतेर् न लभ्यते न लभ्यते। न है वहां, महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो इसका मतलब बताइए अभी। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही, जिसकी मति, जिसकी बुद्धि, जिसकी इच्छा है क्या प्राप्त करने के लिए? कृष्ण भक्ति रस को प्राप्त करने के लिए क्रियताम मतलब खरीद लेना चाहिए उसको। क्रियताम यदि कुतो कुतः अपि लभ्यते, लभ्यते मतलब प्राप्त होना, और कतः कुतः मतलब कहीं भी, और यदि अगर ये कृष्ण भक्ति कहीं भी उपलब्ध हो तो क्या कर लेना चाहिए? खरीद लेना चाहिए, क्रियताम। लेकिन समस्या ये है, मिलेगा कहाँ? कौन से शॉपिंग मॉल में मिलेगा? कहाँ मिले? कौन से दुकान में जाके, कौन से किराने के दुकान में, कपड़े के दुकान में, होटल में, कहाँ से जाके खरीदेंगे ये? वो कह रहे हैं कि अगर आप कृष्ण भक्ति रस चाहते हो तो आपको खरीदना चाहिए। अगर ये कहीं बिक रहा है तो, कहीं उपलब्ध है तो खरीद लीजिए इसको। लेकिन सवाल ये है कि कहां खरीदा जा सकता है, क्या मूल्य है इसके लिए, पैसों से कीमत चुकाना पड़ेगा या किस चीज से कीमत चुकाना पड़ेगा। तत्र तो वहां आपको मिलेगा या वो मूल्य देना पड़ेगा, क्या है, लौल्यम अपि, लौल्यम मतलब लोभ, लौल्यम अपि मूल्यम, मूल्यम एकलम, केवल एक ही मूल्य है उसके लिए। अगर आपको ये कृष्ण भक्ति का रस खरीदना है तो उसके लिए मूल्य है लौल्यम, और ऐसे लौल्यम के बिना आप कभी भी इस कृष्ण भक्ति रस को खरीद नहीं पाएंगे। जितने भी आप सुकृति करते रहिए, पुण्य एकत्र करते रहिए, जन्म कोटि 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 जन्मों तक आप सुकृति एकत्र करते गए, फिर भी न लभ्यते, नहीं पाएंगे आप। जब तक कि ये लौल्यम, ये लालसा नहीं होगी, लोभ नहीं होगा भगवान को प्राप्त करने के लिए, तब तक आपको नहीं मिलेगा ये कृष्ण भक्ति का रस। ठीक है, और यही टिकट की कीमत है भगवत धाम में जाने के लिए। प्रभुपाद स्पष्ट बता रहे हैं ना, हर यात्रा के लिए कोई टिकट चाहिए, तो भगवत धाम में जाने के लिए भी टिकट चाहिए। और ये टिकट क्या है, लौल्यम, लोभ। तो ये है तीन प्रकार की विज्ञप्ति, संप्रार्थनात्मिका, दैन्य बोधिका और लालसामयी। ठीक है, तो आज काफी देर हो गई, क्षमा कीजिए, ये टॉपिक हमको समाप्त करना था, इसलिए अभी तक अध्याय समाप्त ही नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि वो हमें सिखाना चाहते हैं बहुत कुछ। अच्छा, जय देवकीनंदन, प्रभु ने प्रसाद लाया है, ठीक है।